ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मधुभोज दशार्हारः कुकुरांभक वृष्णयः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता नागर्भोगवतीमिव सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणाम् चित्रध्वजप्रताकादि अन्तः प्रतिहतातपाम् सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वराम् सिक्ताम् गन्धजलैरुक्ताम् फलपुष्पाक्षतांकुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षत्फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलभिर्धूपदीपकैः दशार्ह दशार्ह बहुश कुकुर अंधक वृष्णि भी है। कुकुर अंधक और वृष्णि के वंश में उत्पन्न हुए जादुओं द्वारा आत्मतुल्य बल ही जिनमें अद्वितीय बल था जिनके समान बलवान कोई नहीं है ऐसे जादुओं द्वारा गुप्ताम वह द्वारका सुरक्षित थी। नाग ही नागों के द्वारा भोगवती भोगवती इवा जैसे इस श्लोक के पूर्व श्रील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरी जो सीताओं के हस्तिनापुर के नारियों के वचन का अभिनंदन किया भगवान ने नंद मुस्कान और निरीक्षण के द्वारा और इसके बाद वे प्रायशपुरी द्वारकापुरी में प्रवेश किए। तो अब द्वारकापुरी का वर्णन 5 श्लोकों में किया जा रहा है। मधुभोज दशारहारः कुकुरांधक वृष्णभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ताम् नागर्भोगवतीमिव। उस द्वारका में जदुवंशी रहते हैं। जदुवंशियों में पूर्वजों के अनेक नाम हैं और उनके द्वारा शाखा प्रशाखा बहुत हो गया है, तो उनके नाम बता रहे हैं। मधु भोज दसार है, कुकुर अंधक वृष्णि इत्यादि ये जादों के पूर्वजों के नाम है। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी माधव कहा जाता है क्योंकि मधुवंश में है, और उनको दसार वंश भी कहा जाता है, वार्ष्णेय भी कहा जाता है वृष्णि वंश में उत्पन्न होने। तो इन्हीं ने पूर्वजों से आए हुए परंपरा में जो जन्म लिए थे उन जादुओं के द्वारा द्वारका सुरक्षित थे। गुप्तम, गुप्तम का अर्थ सुरक्षित। इनके विषय में श्री लसुद गोस्वामी कहते हैं आत्मतुल्य बल, जादवों का बल बस उनके ही तुल्य था, वैसे दूसरे में कहीं बल था ही नहीं, आत्मतुल्य उनकी उपमा बस उन्हीं से दी जा सकती थी। इतना शस्त्रवेता बलवान, क्योंकि भगवान के वैसे पार्षद हैं अतः उनके समान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं, ऐसे जादुओं के द्वारा वह द्वारका सुरक्षित थी। जैसे नागों के द्वारा भोगवती, भोगवती पाताल लोक में एक नगरी है जहां नाग रहते हैं, बहुत समृद्ध नगरी है, स्वर्ग से अधिक धनी है और नागों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, बहुत विषैले नाग रहते हैं, उन्हें कोई उपद्रव नहीं कर सकते। नागई भोगवती निया, इस विश्व में बहुत सुंदर सुंदर नगर हैं, उन नगरों के विषय में तो मानवों को कोई जानकारी ही नहीं है। मनुष्य तो केवल यही न्यूयॉर्क सिडनी मेलबोर्न और एले जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कोई नगर है इसको लोग नहीं जानते हैं। ये नहीं रह सकते ना, अब जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि जल के भीतर कोई रह ही नहीं सकता है, क्यों नहीं रह सकता, जल के भीतर भीतर तो अनंत जलचर है। स्वर्ग में और पाताल लोक में इधर उधर इस पृथ्वी से कई गुना अधिक धनी नगर है, यहाँ तो सब ईंट लकड़ी पत्थर का घर बनता है, उधर तो केवल रत्नों से बनता है, रत्न की वेदियां बनाई जाती है, खंभा सब कुछ, ये श्रीमद भागवतम प्रमाण। ऊपर इंद्र देव जहाँ रहते हैं उस नगर का नाम है, उस पुरी का नाम है अमरावती। वरुण देव जी जिस नगर में रहते हैं उसका नाम है विभावरी। कुबेर जी रहते हैं उसका नाम है अलकापुरी। और नागों की जो पुरी है उसको भोगवती कहते हैं। इसका नाम इसीलिए भोगवती है कि वहां प्रचुर भोग है, इसलिए उसका नाम भोगवती कहा गया। द्वारका की समृद्धि का वर्णन करने के लिए और उसकी सुरक्षित स्थिति का वर्णन करने के लिए सूत जी कहते हैं कि जैसे नागों के द्वारा सुरक्षित भगवती है वैसे द्वारका सुरक्षित। अब द्वारका के वैभव का वर्णन कर रहे हैं, सर्वर्तु सर्व विभव पूर्ण वृक्ष लताश्रम ही उद्यान वनारामय वृत पद्मा कर श्रेयम। वहां के जो भी वृक्ष हैं लताएं हैं सभी ऋतुओं में सर्व वैभव से युक्त है। वृक्ष और लता का वैभव क्या है, फल और पुष्प। द्वारका के जितने भी वृक्ष हैं और लताएं हैं वे सभी ऋतुओं में सब प्रकार का फल फूल देते हैं। सर्वर्तु सर्व विभव, सभी ऋतुओं में सब वैभव देते हैं। इसमें पृथ्वी पर ऐसे वृक्ष नहीं है जो सभी ऋतुओं में फल फूल दें। हम तो सुनते हैं इधर के वृक्ष जाड़े में पत्ता भी धारण नहीं करते हैं, सब शून्य हो जाते। बाद में गर्मी में पत्ता लगता है। भगवान के धाम में द्वारका में जितने वृक्ष थे सब प्रकार के पुष्प और फल सभी ऋतुओं में लगे रहते हैं। पूर्ण वृक्ष लता आश्रम है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष उसमें है। और लताश्रम, लताश्रम का अर्थ है लता मंडप। द्वारका भरी है जहां तहां लता से मंडप बन गया है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में बहुत से लताओं के मंडप बने रहते हैं जिनके भीतर लोग बैठते हैं विश्राम करते हैं, तो लताश्रम कहते हैं। लताएं ही बढ़ करके घर बन जाती हैं, इसको लताश्रम या लता मंडप कहते हैं। द्वारका इस तरह के लता मंडपों से और पुण्यवान वृक्षों से भरी हुई, मतलब लताएं फल और पुष्प से समृद्ध रहती हैं और उनमें बहुत सुगंध रहता है। बिना गंध वाले फूल तो द्वारका में एक भी है ही नहीं, सब में सुगंध है, पुष्प है, फल है, सब ऐसे ऐसे उद्यान है वहाँ। उद्यान उपबना रामाय, उद्यान का अर्थ है फल प्रधान बगीचा और उपवन का अर्थ होता है पुष्प प्रधान बगीचा, और आराम का अर्थ है छोटे छोटे तलैया सरोवर, जैसे उसमें भरे पड़े हैं। यह आराम का एक अर्थ होता है पार्क, समझ में, जहाँ लोग घूमते हैं, विश्राम करते हैं। यह द्वारका भरी हुई है अनेक उपवनों से, अनेक उद्यानों से, और वहाँ के जो पद्माकर हैं, पद्माकर का अर्थ है सरोवर, जिनमें कमल गहगह खिले रहते हैं, खिले हुए हैं, तो ऐसे सरोवरों की सुंदरता से वह द्वारका झुकता है। ऐसे ऐसे सरोवर हैं जो पद्मों के आकर हैं, कमल के खजाने हैं, सब जगह कमल खिले हैं और ऐसे बहुत से सरोवर द्वारका में हैं। इसके द्वारा यह वर्णन किया गया कि द्वारका में हमेशा सुगंधित वायु फैला रहता है कमलों को लेकर, और शीतल, क्योंकि सरोवर बहुत हैं इसलिए सुगंधित हवा वहाँ है, शीतल हवा है और सुगंधित हवा है। गोपुर द्वार मार्गे सुकृत कौतुक तोरणाम, गोपुर द्वार मार्ग सुकृत कौतुक तोरणम, गोपुर मार्ग और द्वार मार्ग, अथवा गोपुर द्वार और मार्गों में। गोपुर कहते हैं पूर्व द्वार को, पूर्व द्वार का अर्थ है पहले के नगरों में, नगर में प्रवेश करने के लिए गेट बने होते थे, जैसे आज भी दिल्ली में हम लोग सुनते हैं अजमेरी गेट है, काश्मीरी गेट है, कई कई गेट बने होते थे और बहुत बड़ी चहरदीवारी होती थी, बाउंड्री होती थी, सभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो जहाँ प्रवेश द्वार होता था शहर में उसको गोपुर कहा जाता है, और द्वार का अर्थ है घर में जब प्रवेश करते हैं जिस मार्ग से, उसको द्वार कहते हैं। गोपुर और द्वार, इन पर कृत कौतुक तोरणम, बहुत से उत्सव के दृश्य सजाए गए थे द्वार द्वार पर, बहुत अच्छा अच्छा दृश्य अलंकार किया गया था, चित्रकारी की गई थी, द्वार सजाए गए थे। यह भगवान के जाने पर ही सजाई गई थी द्वारका, ऐसी बात नहीं है, नित्य ही ऐसी सजी रहती थी और रोज रोज सजाई जाती थी प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि भगवान आने वाले हैं इसलिए, भगवान के आने की खबर भी नहीं है। द्वारका इस तरह चिन्मय नगरी है भगवान की, इस तरह सजी रहती है, रोज रोज सजाया जाता है। तो नगर के प्रवेश द्वार पर और घर के प्रवेश द्वार पर और मार्गों में बहुत सजावट की गई थी। कृत कौतुक तोरणाम, चित्र ध्वज पता काग्र अंत प्रतिहतात्म, और द्वारका में इतने झंडे बड़े बड़े लगाए गए हैं, इतने इतने ज्यादा हैं कि उससे अंत प्रतिहत आतपम, द्वारका के गलियों में भीतर कहीं भी धाम नहीं लग रहा है, इतने पताका इतने झंडा फहरा रहे हैं कि वे सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। प्रतिहत आतपम, आतप धाम नहीं आ रहा है। चित्र ध्वज पताका, विभिन्न प्रकार के ध्वज और विभिन्न प्रकार के पताका फहरा रहे हैं, इतना ज्यादा फहरा रहे हैं कि घाम नहीं आता कहीं, प्रतिहत आतपम नगर है। सम्मार्जित महामार्ग रक्षा पड़क चतराम, सिक्काम गंध जल रूपताम फल पुष्पाक्षतांकुर, और सम्मार्जित हमेशा रहते हैं द्वारका के जितने भी महामार्ग हैं। महामार्ग का अर्थ है राजपथ, बड़े बड़े रोड, और रथ्या का अर्थ है बड़े बड़े रोडों से जो दूध निकलते हैं छोटे छोटे, उनको रथ्या कहते हैं। महामार्ग सब क्लीन है, बिल्कुल स्वच्छ धो धा करके, और रथ्या छोटे छोटे मार्ग भी बिल्कुल ठीक है। रथ्या आपणक, आपणम का अर्थ है बाजार, बाजार के जो मार्ग है वहां भी कोई ऐसा नहीं है कहीं केले का छिलका फेंका हुआ है कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल स्वच्छ है। सिक्का गंध जल है, वह नगरी द्वारका सुगंधित जल से सिक्त है, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। जो जल आजकल आदमी को देह पर डालने को नहीं मिलता है, हम लोग स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, बस यही साधारण जल से नहा लेते हैं। कलयुग में यही होगा, द्वादश स्कंध में कहा गया है कि स्नानम एव प्रसाधनम, कलयुग में लोग जल से स्नान को ही प्रसाधन मानेंगे, और स्नान सुगंधित तेल से स्नान या उबटन लगाना या कई तरह से ये कौन कर रहे हैं। दूसरे का बनाया हुआ साबुन लगा लिया, गंदा वस हो गया। स्नान में वो प्रसाद में स्नान ही बस बहुत भारी साधन माना जाए। जल से स्नान, द्वारका की गलियों में, बाजार में, राजपथ पर या रथ या छोटे छोटे सड़कों पर सब जगह सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। सिक्ताम गंध जल है, उत्ताम फल पुष्पाक्षर, और सर्वत्र फल पुष्प अंकुर और अक्षत ये सब विकीर्ण किए गए हैं मंगल के लिए, इनको देख करके मनुष्य का मंगल होता है। सब जहां तहां बिखेरे गए हैं द्वार द्वार पर। अक्षत का अर्थ है बिना टूटा हुआ चावल, पूरा पूरा चावल होता है उसको अक्षत कहते हैं, छत का अर्थ टूटा हुआ, और अक्षत टूटा हुआ चावल नहीं। और अंकुर, अंकुर से तात्पर्य है जैसे गेहूं का अंकुर, जल का अंकुर जगह जगह दिखे रहे हैं। अब कहीं नहीं पाएंगे कि द्वारका में कोई अंडा का छिलका गिरा हुआ है, नहीं। यही सब चीजें मंगलमय द्रव्य बिखेरे गए रहते, फल पुष्प अक्षत और अंकुर। फल केला आदि के सब जगह सजाए गए बिखेरे गए, पुष्प अक्षत और अंकुर, और सारे मार्ग बहारे गए हैं, साफ हैं, सुगंधित जल का छिड़काव किया गया है। द्वारी द्वारी गृहाणां च दध्यक्षत फलेक्षुभिः अलंकृतां पूर्णकुंभैर् बलिभिर्धूपदीपकैः। द्वारी द्वारी च गृहाणां च, घरों के द्वार द्वार पर, इसका अर्थ प्रत्येक द्वार पर फल दधि दध्यक्षत क्या है, फलेक्षुभिः, दध्यक्षत फलेक्षुभिः, दही अक्षत फल और गन्ना ईख इनसे अलंकृत, ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं। वास्तव में यही देखने लायक और खाने लायक वस्तुएं हैं। कि दही अक्षत फल और इच्छु इन सबसे वो अलंकृत है नगरी, द्वारी द्वारी द्वार द्वार पर सजाए गए, अलंकृता पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ का अर्थ है कि जल से भरे हुए घड़े सजाए गए हैं, सोने के घड़े जगह जगह रखे गए हैं द्वार द्वार पर, इनसे अलंकृत है द्वारका। भगवान का अपना धाम है, वहां किस बात की कमी हो सकती है। कलश सजाए गए हैं, वे कलश हैं पूर्ण कुंभ, जल से भरे हुए, द्वारी द्वारी पर गृहाणां, घर घर के द्वार द्वार पर सब जगह। बलभीर धूप दीपक, और अनेक प्रकार के उपहार सजाए गए हैं, और धूप और दीपक। दीपक का अर्थ घी के दीपक जला जला करके रखे गए हैं, और धूप, धूप का अर्थ बहुत सी अगरबत्तियां जलाई गई हैं, वो सुगंधित धूप की कह रहे। यह है द्वारका का वर्णन। ऐसे द्वारका में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, यह वर्णन है। इसी जिस नगर में भगवान प्रवेश कर रहे हैं उसका वर्णन सुन देखिए। अब वहां के लोगों का वर्णन करते हैं, कौन कौन किस तरह से कृष्ण के पास आया, तो सबका तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रधान लोगों का नाम रख रहे हैं। निशम्य प्रेष्ठम आयांतम वसुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रदुम्नश्चारुदेशनश्च साम्बोजाम्बवती सुत प्रहर्ष वेगो छसित शयनासन भोजनः वारणेन्द्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमंगलैः शंखतुर्जनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रतः प्रतिजगमूरथैर्हृष्टा प्रणयागत साध्वसः साध्वस। यहाँ तक एक अन्वय है श्लोकों का। वसुदेव जी ने सुना प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण आ रहा है। ये सुना उन्होंने, कृष्ण आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कृष्ण आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, प्रेष्ठम आयांतम। वसुदेव जी ने सुना कि प्रेष्ठम आयांतम, कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय आ रहे हैं। वास्तव में वसुदेव जी के लिए या अक्रूर जी के लिए, उग्रसेन जी के लिए, भगवान श्री राम के लिए, बलराम जी के लिए, श्री कृष्ण अरबों खरबों प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसीलिए सूत जी यहाँ प्रेष्ठम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, प्रिय। जीना कितना प्रिय है व्यक्ति को, कल मैं उदाहरण दिया था सांस लेने का, इससे कोटि कोटि गुना कृष्ण प्रिय हैं वसुदेव जी को। जब वसुदेव जी ने सुना कि प्रियतम आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो ये जो कार्य कर रहे थे उसको तुरंत छोड़ दिए। प्रहर्ष वेगो छसित शयनासन भोजन, प्रहर्ष से उच्छसित, उच्छसित अर्थ उल्लंघित, छोड़ दिए। शयन आसन भोजन, कोई जो लेटे हुए थे वो लेटना छोड़ दिए, भोजन कर रहे थे भोजन करना छोड़ दिए, आसन बैठे थे बैठना छोड़ दिए, तुरंत चल दिए, तुरंत सजाने लगे, यह कृष्ण को देना है, ऐसे अगवानी करनी है, तुरंत चल दिए। एक सेकेंड भी कार्य की पूर्णता पर ध्यान नहीं दिए। ऐसा नहीं सोचते हाँ थोड़ा फोन आया है आवश्यक, इसको पूरा कर लेते हैं तो चलेंगे, नहीं नहीं। भगवान के दर्शन के लिए, उनके स्वागत के लिए जो भी कार्य कर रहे थे उसी समय छोड़ दिए। कोई भी कार्य हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहा हो या भोजन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसी समय छोड़ दिए। इतना आनंद हुआ सुन करके कि अब वो भोजन शयन आसन का आनंद उसके आगे कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिए। महामना, उनके मन में उल्लास छा गया। महामना सबके लिए लगेगा विशेषण। तो सबसे पहले गुरुवर्ग का नाम दिया जा रहा है जो श्री कृष्ण से संबंध में बड़े हैं, वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और भगवान श्री राम। ये चार का नाम यहाँ ले रहे हैं। चकार से अनुक्त समुच्चय, चौथ जो शब्द दिया जा रहा है, तो उसके अंदर जिनका नाम यहाँ नहीं लिया गया है उन सबको भी गृहित कर लिया गया है। अनुक्त समुच्चय, अनुक्त का अर्थ जिनको नहीं कहा गया है उन समुच्चय सबके लिए चौथा प्रयोग किया गया है, ये समझना चाहिए। प्रदुम्न, प्रदुम्न ये भगवान के सबसे बड़े पुत्र थे। चारुदेशनश्च, चारुदेशन भी पुत्र हैं, और साम्बो, साम्ब जो जामवती के पुत्र हैं। इस तरह से भगवान की तो अनेक पत्नियां थी, उनमें से मुख्य पुत्रों का नाम लिया गया, और चकार से और सारे पुत्र अधिगृहित होते हैं। इस तरह यह संस्कृत भाषा की विशेषता है। कहीं कहीं च शब्द का अर्थ होता है अपि भी, कहीं च शब्द का अर्थ होता है जिनका नाम नहीं लिया गया वो सौप, कहीं चकार्थ विरुद्ध भी होता है। यहाँ चकार शब्द का अर्थ है कि और जिनका नाम नहीं लिया गया वे सभी, और सबके लिए महामना, महामना का अर्थ होता है जिसके मन में बहुत आनंद छा गया हो, उदारता बढ़ गई हो, उसको महामना कहते हैं। विषम पृष्ठम आयांतम, आयांतम पृष्ठ, प्रियतम आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, ये सुनते ही बहुत मन में उल्लास छा गया। तो वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी और बलराम जी तथा प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब, ये सब प्रहर्ष वेगोच्छ्वसित, प्रहर्ष लोग, इतना प्रहर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ कि उच्छ्वसित, त्याग दिए उसी समय क्या क्या, शयन, आसन, भोजन, शयन छोड़ देते। सोना कितना प्रिय आदमी को लगता है, आजकल के तो लड़कों को जगाइए भोर में तो कहते हैं पांच मिनट डेली और पांच मिनट करते करते घंटों बीत जाता है, नहीं उठते। और भोजन, एक कौर खाया है आदमी वो छोड़ करके भागेगा नहीं, भोजन बहुत प्रिय लगता है, बैठा है। लेकिन वो लोग कोई भी कार्य कर रहे थे तुरंत छोड़ दिए, उच्छ्वसित तुरंत उल्लंघित कर दिए, और तुरंत ही वारणेन्द्रम पुरस्कृत, एक सुंदर श्रेष्ठ हाथी को आगे करके सजा करके भगवान के स्वागत के लिए चल दिए। सब लोग रथ पर चल रहे थे, रथ पर क्यों चल रहे थे कि शीघ्र कृष्ण के पास पहुंच जाए। द्वारका बड़ी नगरी है ना, तो वो प्रवेश भी किए होंगे तो दूर होंगे, रथ से जाना है ना, जैसे यहाँ के लोग कार से चलते हैं कहीं भी जाना है चाहे तो, द्वारका के लोग ऐसे रथ से चलते हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए चल दिए। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, हाथी को आगे करके, मंगल के लिए होता है, किसी जुलूस में शोभा यात्रा में हाथी ले जाया जाता है, जिसके पास हाथी नहीं रहता है वो हायर करके हाथी ले जाते हैं, देखा गया है आज। वारणेन्द्रम पुरस्कृत, पूरा कार्य आगे, कृत्य करके करके सामने करके आगे करके, ब्राह्मण सुमंगल है, और ब्राह्मणों को भी आगे किए, ब्राह्मण चल रहे थे सुमंगल है, सुमंगल की वस्तुएं हाथ में लिए थे, जैसे नारियल या कोई पुष्प जो मंगल करता है, और शंख तूर्ज मिला देना, शंख तूर्ज आदि बज रहे थे जोर से, बजने लगे, और ब्रह्म घोषण चादर का, ब्रह्म घोष का अर्थ है मंत्र पाठ, वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ब्रह्म घोष का अर्थ है वेद के मंत्रों का घोष, अथवा ब्रह्म घोष का अर्थ है स्पिरिचुअल साउंड, स्पिरिचुअल आवाज। ये महामंत्र का जो उच्चारण है यह प्राकृत नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं समझना जैसे और हल्ला होता है ऐसे यह भी हो रहा है, और सब जो हल्ला है वो प्राकृत जगत का है, और यह जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकेत, यह गोलोक का शब्द, जैसे हम लोग कई शब्द सुनते हैं, कोई बच्चा बोल रहा हो बाहर तो हम लोग कहेंगे कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन यहाँ अगर रेडियो बोल रहा है तो हम लोग हो सकता है कहें कि बीबीसी लंदन का है, ये वहाँ का शब्द है, ये यहाँ पास का नहीं है, बीबीसी लंदन का है या जहाँ का, न्यूयॉर्क का हो या इंडिया का, भारत का, दिल्ली का, बॉम्बे का, तो बहुत से साउंड भरे पड़े हैं इस जगत में, शब्द हैं, लेकिन भगवान के जो नाम है इस जगत में ये सब गोलोक से आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हैं, ये यहाँ का प्रोडक्ट नहीं। ऐसा नहीं समझिए कि रा और म मिला करके राम बना दिया गया ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, तो इसको ब्रह्म घोष कहते हैं किसी की अगवानी। आजकल तो भारतवर्ष में भी लोग विवाह आदमी बस सिनेमा का गीत बजा देते हैं, माया घोष कहते हैं, वो ब्रह्म घोष नहीं है, और अमंगल हो जाता है भगवान के नाम का कीर्तन या कोई गीत गाया जाए, मंत्र बोला जाए, तो ब्राह्मण जो चल रहे थे वे ब्रह्म घोष कर रहे थे। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के मंगल के लिए। ये सुख पूर्वक आ गए हैं, द्वारका में सुख से रहे हैं, उनके मंगल के लिए ब्रह्म घोष किया जा रहा है। सदा वर्णन है भागवत में, सब जगह वर्णन है। किसी शुभ अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था, तो वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है, इसीलिए इसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वह भी प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव के मुख से सुनाई पड़े तो और मंगल होता। बजाना चाहिए तो प्रभुपाद जी के मुख से सब नाम बजाना चाहिए, तथा कथित गायकों के मुख से नहीं। शुभ अवसर पर फेस्टिवल में ऐसे होना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों के मुख से नाम निकला है तो और अच्छा। तो ब्राह्मण चल रहे थे तो वेद घोष कर रहे थे, शंख तुरही आदि बाजे बज रहे थे। प्रत्येक जगमुह रथर हृष्टा प्रणयागत साधु का, प्रणय का अर्थ स्नेह, स्नेह से उनमें घबराहट आ गई। घबराहट का अर्थ है कि समझ नहीं पा रहे थे इसमें क्या ले चलें, क्या करें, जल्दी जल्दी में वे स्नेह में विकल हो रहे हैं। रथ पर चढ़ करके चले, रथ हृष्टा बहुत हर्षित थे। प्रत्येक जगमुह श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए सब लोग चले। ध्यान रखना चाहिए कि इनमें जिन जिन लोगों का नाम गिनाया गया है भगवान से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। वसुदेव जी भगवान के पिता हैं और क्रूर जी चाचा हैं और उग्रसेन जी नाना। यही राजा थे द्वारका के, और भगवान श्री राम तो खास बड़े भाई ही हैं। और तीन पुत्रों का नाम लिखा गया है, प्रद्युम्नाचार्य, वशिष्ठ, सांबो, जम्बवती, सुपर। और सारा समाज चल रहा है, लेकिन किसका किसका नाम कहा जाए, इसलिए चकार से सबको गृहित कर लिया गया। सभी चल रहे, वार मुख्या शत सो जान तद दर्शन चुका, लसत कुंडल निर्भात कपोल बदन श्रिया श्रिया। और इसके साथ ही जब भगवान के स्वागत के लिए सब लोग चल रहे हैं, देखिए ये लोग तो भगवान के देह के संबंधी हैं, पर द्वारका में कोई भी व्यक्ति कृष्ण को अपने प्राणों से अधिक मानता था। वहां की वारांगनाएं चल रही हैं, वहां की नर्तकियां, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों निकली घर से भगवान का स्वागत करने के लिए। बार मुखिया तो सतसह जाने सब दर्शन करो, यानों से चल रहे थे। यान का अर्थ है पालकियों पर चढ़ करके चल रहे थे। अथवा तो दूसरा कोई यान होगा जिसमें सूत गोस्वामी देख रहे हैं कि उनके कपोल कितने सुंदर हैं, उनके कुंडल कितने सुंदर हैं, लसत कुंडल निर्भाता कपोल बदने से। इन वारांगनाओं के मुख बहुत सुंदर हैं और कुंडल से उनका गाल झिलमिल झिलमिल कर रहा है, ये सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। भगवान के स्वागत में चलती हुई वारांगनाओं के सौंदर्य का वर्णन किए। यह वर्णन करके अब कहते हैं, नट नर्तक गंधर्व सूत मागध बंदिन गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानद्भुतानि च। और नट नर्तक गंधर्व सूत मागध और बंदी ये लोग उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र को गा रहे थे। नट का अर्थ होता है रसाभिनय चतुरा, जो कोई चीज गाया जा रहा है उस गान के अनुसार जो लोग भाव बताते हैं, अभिनय करते हैं, उनको नट कहा जाता है। तो जो भगवान की लीलाएं गाई जा रही थी, मान लीजिए भगवान की ब्रज लीला गाई जा रही हो, तो ये जो नट थे वे लोग भगवान जैसे बांसुरी बजाते हैं वैसे बांसुरी बनाने का भाव दिखा रहे थे या अभिनय कर रहे थे, जो नट कहते नट नर्तक, और नर्तक का अर्थ है ताल राग आदि स्वर के अनुसार जो नाच रहे थे। नाचना अलग चीज है और अभिनय करना अलग चीज है। तो कुछ लोग अभिनय कर रहे थे, कुछ नाच रहे थे, भगवान को दिखाया जा रहा था। नट नर्तक और गंधर्व, गंधर्व का अर्थ है कुछ लोग गा रहे थे, आलाप ले रहे थे। गंधर्व का अर्थ ही नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग से गंधर्व आ गए थे। गंधर्व का तत्पर जो है गा रहे थे, अभिनय कर रहे थे कुछ लोग, कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे। सूत माघ बंधु न सूता पौराणिका प्रोक्ता मागधा वंश संश कह बंदिनस को अमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृश होता। सूत का अर्थ होता है जो पुराणों से कथा कह रहे थे, पुराणों से गीत गा रहे थे, पौराणिक गाथाओं को जो गाते हैं उनको सूत कहते हैं। और मागध उसे कहते हैं जो किसी राजा के वंश की प्रशंसा करते हैं। बंदी का अर्थ है जो उस प्रस्ताव के अनुसार जैसा अवसर है उसके अनुसार तत्काल बोलते हैं, उनको बंदी कहते हैं। इन तीनों के लिए अमल प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। चीजें बहुत शुद्ध बुद्धि के होते हैं। इस तरह देखिए छह विभाग है, अभिनय कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और कुछ पुराणों से गाथाएं कह रहे हैं, कुछ वंश की प्रशंसा कर रहे हैं, और कुछ उस प्रस्ताव के अनुसार कि आहा द्वारकाधीश कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, प्रस्ताव के अनुसार बोल रहे हैं, गा रहे हैं। गायन के चोत्तम श्लोक का चरितन अद्भुत आने का, भगवान के अद्भुत अद्भुत चरित्र को गा रहे हैं। अद्भुत चरित्र में जैसे परीक्षित रक्षा, महाभारत युद्ध में पांडवों की रक्षा, या और भी ब्रज में जो भगवान ने किया है, सब अद्भुत चरित्र। अद्भुत का अर्थ है अलौकिक, लोक में ऐसा कोई कर नहीं पाता। ये सब गान हो रहा था और भगवान से अब सब लोग मिलते हैं, तो कैसे कैसे भगवान सबसे मिले इसका वर्णन सूत जी करते हैं। भगवान तत्र बंधु नाम पौराणाम अनुवर्तित अनुवर्ति नाम जथा विद्युप संगम या सर्वेशा मानम आदधे। भगवान सबका मानम आदधे, सबका सत्कार किए। ये प्रश्न हो सकता है कि एक व्यक्ति और लाखों लोगों का स्वागत कैसे स्वीकार कर लिया और कैसे सबको मान दिया। इसीलिए सबसे पहले कहते हैं भगवान, ये भगवान है। जितने लोग थे उतने रूप प्रकट करके सबको मान दिया भगवान। प्रत्येक व्यक्ति यही समझ रहा था कि कृष्ण हमको देखकर हंस रहे हैं या हमें से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान है, भगवान के लिए कोई प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि दो चार दिन या दो चार महीना लग जाए एक एक आदमी से मिलने में। भगवान तत्र पौराणम, पौराणम का अर्थ है द्वारका में जो रहते थे। बंधु नाम, बंधु नाम का अर्थ है जो भगवान के संबंधी थे। पूर्वासियों से भगवान मिले, बंधुओं से मिले, और अनुवर्ती नाम और जो भी उनके सेवक आदि थे वहां अनुगामी थे। जथा विधि उपसंगम, जथा विधि का अर्थ है कि जैसी लोक में विधि है, संबंध के अनुसार, आयु के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार, जैसे जिससे मिलना चाहिए उस विधि से संगम्य उपसंगम्य बहुत अच्छी तरह से संगम करके मिल करके सर्वेशा मानम आदधे, सबका मान रखे। जो जैसा चाहता था भगवान से वो भगवान ने किया, उसी को आगे सूत जी कह रहे हैं। प्रहवाभिवादना श्लेष करस्पर्शस्मित क्षण ही आश्वास चाष्पाकेभ्य बरश्चाभिमतैर विभु विभु सर्व समर्थ है श्री कृष्ण। बहुत हो गए थे, जितने लोग थे द्वारका में उतने बन गए। विभु शब्द का अर्थ यहाँ ये है, तो किसी किसी को भगवान ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, इसको प्रहवा कहते हैं। प्रहवा, जब सिर झुका करके चरण में रह करके या थोड़ा भी झुका करके प्रणाम किया जाता है तो इसको प्रहवा कहते हैं। और अभिवादन का अर्थ होता है वचन से प्रणाम। किसी किसी को भगवान ने वचन से प्रणाम किया है, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण, यह भी एक प्रणाम है वचन से, इसको अभिवादन कहा जाता है। और प्रहवा का अर्थ है सिर से प्रणाम, सिर झुका कर। किसी किसी को श्री कृष्ण ने सिर झुका कर प्रणाम किया जो बड़े थे। किसी किसी का वचन से अभिवादन किया, वचन से प्रणाम किया, ये लोग भी कुछ बड़े थे। और आश्लेष, आश्लेष का अर्थ है किसी किसी को देख कर श्री कृष्ण सीधे आलिंगन में लिए, जो भगवान के सम वयस्क थे, अथवा श्री कृष्ण के आलिंगन की जो कामना रखे थे, जानते हैं कि हम मिलेंगे तो श्री कृष्ण से ऐसे मिलेंगे, वहां प्रणाम आदि की बात नहीं होती है। जैसे अर्जुन, जब हस्तिनापुर में भगवान मिलते थे तो अर्जुन उनको कभी प्रणाम नहीं करते हैं, न तो भगवान उनको प्रणाम करते हैं, बिल्कुल समान संबंध है, इसलिए दोनों हृदय से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि फिर बाद में अर्जुन प्रणाम करे, नहीं वो साक्ष्य रास्ता है। तो प्रहवा विवाद नाश्लेष, आश्लेष का अर्थ है आलिंगन, विश्लेष का अर्थ होता है वियोग। तो आश्लेष, किसी किसी का आलिंगन किया भगवान ने। प्रहवा विवाद नाश्लेष करस स्पर्श, किसी किसी से भगवान ने हाथ मिलाया, हाथ से किसी हाथ मिलाया। और किसी किसी का स्मित क्षण, मुस्कुरा करके किसी पर देख दिया, जैसा जो चाहता था वैसा स्वागत भगवान ने किया। किसी से हाथ मिलाए, किसी का आलिंगन किए, किसी पर देख करके मुस्कुराए। आश्वास चाश्व पाकेभ्य अश्व पाकेभ्य, चंडाल तक जो कुत्ते का मांस खाने वाले वंश में जन्म लिए थे, वहां नहीं खाते थे द्वारका में, लेकिन मतलब उस वंश में जन्म लिए थे, उन लोगों तक को भगवान ने आश्वासन दिया, अभय दान दिया, प्रेम दिया। ये है भगवान का सौशील्य, उनकी सुशीलता। सज्जन शिरोमणि है भगवान, सबे सर्वेशा मानव आदर, जैसे पहले कह गए सबको मान दिए। स्वपाक, स्वपाक का अर्थ होता है स्व का अर्थ कुत्ता, पाक का अर्थ खाने वाला। भगवान ने कुत्ता तक खाने वाले के वंश में चंडाल से भी प्रेम से मिले, सबका मान रखा, क्योंकि उनकी दृष्टि में सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं। इस तरह से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है कि सबसे मिल लिए, सबका स्वागत स्वीकार किए, सबका विरह ज्वर कम कर दिए। कई बार शास्त्रों में इस तरह के शब्द आते हैं कि कोई चंडाल के वंश में भी जन्म लिया है वह भी शुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बारम्बार अनुवाद किए हैं कि डॉग ईटर, डॉग ईटर के परिवार में जन्म लिया है लेकिन फिर भी भगवान की शरण ले, किसी आदि का संग करे तो वह पवित्र हो जाता है, अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु डॉग ईटर क्या काउ ईटर तक तर सकते हैं? तो मनुष्यों की जो सबसे न्यूनतम श्रेणी मानी गई है, सबसे छोटी, वो डॉग ईटर तक है। कभी तो प्रश्न होता है कि काउ ईटर, वो तो मनुष्य है ही नहीं, मनुष्यों में उनकी गणना नहीं की जाती है, जो कोई पिशाच राक्षस आदि है, गाय खाते हैं, उनकी गणना ही नहीं है मनुष्यों में। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान की शरण में आने पर वैष्णवों की कृपा से तर जाते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। यहाँ भगवान के विषय में ये बात बताई जा रही है कि सबका मान रखे, जैसा चाहते बरही चाभी मतर भी है। बरही वरण, बरही का अर्थ वरण, कोई जो चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है तो उस चाह को वर कहते हैं। जो जो चाहता था, किसी किसी की यही इच्छा थी कृष्ण हमारे तरफ देखें, कृपा दृष्टि से भगवान उसके तरफ देखे, जिसकी यह इच्छा थी कि भगवान हमको आलिंगन मिले तो उसको आलिंगन मिले। किसी किसी की यह अभिमति थी कि कृष्ण हमको प्रणाम करेगा, बहुत सुशील लड़का है, तो भगवान उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रभाविवादना श्लेषक करस्पर्श अस्मित क्षण ही आश्वास्त चाष्टोपात के भय वरिष्ठ चाभिमत विभु, जो जैसा चाहता था वैसा भगवान ने किया, जो जैसा चाहता था जो वस्तु चाहता था भगवान ने दिया, इस तरह से मिले। और स्वयं च गुरु भी विप्रय सदारे स्थिर रति आशी भी विद्यमान बंधुभी चाविशत पुरम, इस तरह से भगवान ने सबको आदर दिया और स्वयं आशीर्वाद लिया। किसका आशीर्वाद? विप्रय ब्राह्मणों का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद। गुरुजनों का आशीर्वाद से तात्पर्य है पिता का आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद, उनको गुरु कहते हैं। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, वे ब्राह्मण वृद्ध थे, स्थिर थे, लेकिन फिर भी अपनी पत्नियों के साथ आए थे कृष्ण को देखने के लिए। यहाँ अपि शब्द का अर्थ ये है, स्वयं का गुरु भीर विप्रय सदारे स्थिर रहती, सदारे दारा का अर्थ है पत्नी, अपनी पत्नियों के साथ बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण आए थे। बूढ़े ब्राह्मणों को क्या जरूरत थी जुलूस में आने की, लेकिन कृष्ण को देखने की, उनको आशीर्वाद देने की इतनी लालसा थी कि वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ आ गए थे। स्थवीर ही अपनी स्थवीर ही कहती है, अस्थवीर का अर्थ होता है जो एक जगह रहे, बूढ़े लोग प्राय घूमते नहीं है, लेकिन जो अस्थवीर थे जो कहीं नहीं जाते थे वे भी कृष्ण को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए और उनको भगवान ने प्रणाम किया, उनका चरण छू करके प्रणाम किया, तो वे लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद विद्यमान, भगवान आशीर्वाद को ग्रहण कर रहे थे, कह रहे थे मैं आपकी कृपा से कुरुक्षेत्र के युद्ध में बच करके आया हूँ, आपका आशीर्वाद हमेशा काम करता है। इनके आशीर्वाद को सुनकर भगवान प्रसन्न हो रहे थे। स्वयं तो गुरुभीर विप्रह, अपने पिता का आशीर्वाद, अपने चाचा का आशीर्वाद, नाना का आशीर्वाद, और भी बड़े बड़े लोग थे उनके लिए गुरु कहे गए, उनका आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और अन्य लोगों का भी आशीर्वाद भगवान ग्रहण कर रहे थे। बंदिश्च आविशत पुरम, और बंदी जनों का आशीर्वाद ले रहे थे। बंदी जन ब्राह्मण होते हैं, वे आशीर्वाद सब दे रहे थे, भगवान उसको ग्रहण कर रहे थे। दूसरों को स्वयं भगवान मान दिए और इनको मान दिया, इनको आशीर्वाद दिए बड़े बड़े लोगों ने, उसको ग्रहण करते हुए प्राविशत पुरम नगर में प्रवेश किए। तो यहाँ तक प्रवेश का वर्णन किया गया। अब द्वारका की नारियों का वर्णन करते हैं, जैसे हस्तिनापुर की नारियों का वर्णन किया गया था, अब द्वारका की स्त्रियों का वर्णन कर रहे हैं। राजमार्गम गते कृष्ण द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्म्याण्डारुहुर् विप्र तदिक्षण महोत्सवः। हे विप्र, हे शौनक जी, सूत जी संबोधन करते हैं, 88,000 ब्राह्मण कथा सुन रहे थे, तो उनमें से श्रेष्ठ थे, प्रश्न करने के लिए नियुक्त किए गए थे उनके द्वारा, ये थे शौनक जी, सबसे बड़े वृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और भृगु वंश में उत्पन्न हुए थे। बीच बीच में उनको सूर्य संबोधन करते हैं, हे देवते, हे ब्राह्मण, तदीक्षण महोत्सव, श्री कृष्ण का दर्शन ही जिनके लिए महा उत्सव है, ये द्वारका की कुलांगनाएं, कुलस्त्रीय श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां तुरंत ही कृष्ण को देखने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ गई। राजमार्गम गते कृष्ण, जब कृष्ण राजमार्ग पर चल रहे थे, जो मार्ग बहुत कंजस्टेड होता है जिस पर सभी लोग चलते हैं, बड़ा मार्ग, तो ये जब चल रहे थे, रियल रथ यात्रा थी, भगवान रथ पर थे तो द्वारका की कुलस्त्रिया है, द्वारकायाः कुलस्त्रिय, द्वारका की श्रेष्ठ नारिया हर्म्याणी आरुरुहु, हर्म्य का अर्थ ऊंचे ऊंचे भवन और आरुरुहु का अर्थ आरोहण कर गई, चढ़ गई तुरंत। कोई भी जो काम कर रहे थे, पति की सेवा है, तो जो कि वो लोग तो चले ही गए थे, लेकिन कोई भी काम छोड़ करके उनके भवनों पर चढ़ गई। कविक्षण महोत्सव ये कृष्ण को देखने की लालसा से, क्योंकि कृष्ण का दर्शन ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था, सबसे बड़ा ईक्षण महोत्सव। ईक्षण का अर्थ दर्शन और महाउत्सव, उत्सव का अर्थ था आनंद उल्लास। सबसे बड़ा सुख उन स्त्रियों को इसी बात में था कि कृष्ण का दर्शन करते। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि द्वारका में भगवान तो नित्य रहते ही हैं, इतनी क्या विशेषता कृष्ण की है कि उनको देखने के लिए लोग इतना बेचैन रहते हैं? ऐसे तो हजारों बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो इतनी क्या उत्सुकता है? कोई भोजन छोड़कर दौड़ा उनको देखने के लिए, रिसीव करने के लिए, कोई शयन छोड़ करके, कोई कोई काम, कोई कोई काम, ऐसा और लोग तो दौड़े चलो पुरुष थे, इन स्त्रियों को क्या हो गया? ये क्यों पागल हो गई? क्या जरूरत है देखने की? हजारों बार तो देखी ही है कृष्ण को। तो उसका उत्तर आ रहा है कि नित्यम निरीक्षमाणा नाम, शिव जी कहते हैं नित्यम निरीक्षमाणा नाम जगति द्वार कौ के साम नैव तृप्यंत ही दृश श्रीय धामांगम अच्युतम। शिव जी ये कहते हैं, ये मान लीजिए सौनक जी प्रश्न करेंगे क्या इतनी उतावली हो रही है भगवान को देखने के लिए, आखिर देखनी है हजारों बार, वो द्वारका में ही रहते हैं, इनको देखने के लिए क्या लालसा होगी? जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर रोज ही आता जाता हो तो उसको देखने के लिए थोड़े कोई रोड पर खड़ा होगा, जो नहीं देखा होगा वो एक बार देखना चाहेगा या दो बार देखना चाहेगा। ये रोज रोज ये देखा करो, हमने देखा है भगवान को देखने की कैसी उत्सुकता होती है, श्री विग्रह को देखने की सबसे ज्यादा लालसा में वृंदावन में देखते हैं, पूरे स्थान में प्रतिदिन जो कृष्ण बलराम का पद खुलता है तो एक नया उत्साह और एक नई लालसा लगती है, लगता है जैसे आज पहली बार देख रहे हैं कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर पहली बार, और प्रतिदिन बहुत उल्लास छाता है, वहाँ फूल बरसाए जाते हैं रोज, जीती का पद खुलता है तो रोज फूल बरसाए जाते हैं, कमर बुलाए जाते हैं, और प्रतिदिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज यह अपने ढंग का दर्शन है, अपने ढंग का दर्शन है, और देखने के लिए लोग दौड़ दौड़ करके आते हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं, दर्शन करने हैं। तो भगवान जब साक्षात प्रकट होंगे उनको देखने की कितनी लालसा होती है, इसीलिए वो स्त्रियां मानी नहीं, देखने के लिए चढ़ गई। नित्य निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारकौ के साम, यद्यपि द्वारकौ के साम द्वारकावासियों, द्वारकावासी नित्य निरीक्षमाणा नाम नित्य कृष्ण को देखते हैं, जैसे वृंदावनम परित्यज पादमुखम न गच्छति, वैसे श्री कृष्ण द्वारका भी छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। यह नित्यम का अर्थ बहुत दिन लगातार कई दिन, नित्यम निरीक्षमाणा नाम जो कृष्ण को रोज देखते हैं, लेकिन नैव तृप्यंत ही दृश्य, इन देखने वालों की दृश्य आंखें न एव तृप्यंत, नहीं ही तृप्त होती है, बल्कि जितना वे लोग देखते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है, उतनी ही भूख बढ़ती जाती है, क्योंकि श्री धामांग मचितम, श्री कृष्ण का जो अंग है वो सौंदर्य लक्ष्मी का धाम है, आश्रय है। श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि देखते देखते आंखें कभी तृप्त होती नहीं। इस संसार में तो कोई भी चीज आदमी देखता है तो देखने के बाद कुछ काल के बाद मन हट जाता है, हटाया, लेकिन भगवान इतने सुंदर है। श्रीय धामांगम, स्त्री का अर्थ शोभा सौंदर्य, धाम का अर्थ आश्रय, शोभा ने आश्रय लिया है भगवान के अंगों में, शोभा का वहां निवास है, तो ऐसे श्री कृष्ण के विविध अंगों को देखने में आंखें कभी नैव तृप्यन्ति, कभी भी तृप्त नहीं होती, ऐसी बुद्धि होती ही नहीं आंखों की कि अब देख लिया अब क्या देखें, कभी उबन नहीं है, कभी तृप्ति नहीं है। यद्यपि की द्वारका की स्त्रियां बारंबार श्री कृष्ण को देखी हैं, नित्य देखती हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें तृप्त नहीं थी, इसलिए वे उत्कंठा में चढ़ गए कृष्ण को देखने के लिए। इसी को विशेष विस्तार से सूत्र जी कहते हैं, श्रियो निवासो जस्यो रह पान पात्र मुखम दृशाम बाहवो लोकपाला नाम सारंगाणाम पदम भुजम। यही कारण है कि कुछ विशिष्ट लोग भगवान के अंगों पर किस तरह मनराया करते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। जैसे स्त्रियो निवासो जस्यो रह, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विदुषी और सबसे धनी, सबसे सौभाग्यवती महिला है श्री जी लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी जी ने तो अपना डेरा ही डाल दिया है वक्षस्थल पर, वो तो हटते ही नहीं है। इतना अच्छा है भगवान का वक्षस्थल, भगवान के साथ इतना सुंदर कि लक्ष्मी जी ने तो वहां अपना निवास बना लिया। श्रीयो निवासो जस उरह, जस का अर्थ जिनका, जिनका उरह उरह वक्षस्थल, श्रीय निवास, श्री का निवास है। श्री ने स्थान चुना, सबसे बुद्धिमती नारी है, भगवान को ही इसने चुना। भगवान के वक्षस्थल पर श्री जी रहती हैं। और पान पात्र मुखम दृशान, और जो लोग सौंदर्य का पान करना चाहते हैं, तो भगवान का मुख जो है वो सौंदर्य रस से भरा हुआ पात्र है। पान पात्र मुखम दृशाम, आंखों के लिए, दृशाम का अर्थ है आंखों के लिए, भगवान का मुख है पान पात्र है, सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है। भगवान का मुख अगर एक पात्र है तो उसमें लबालब सौंदर्य भरा हुआ है। तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो सौंदर्य अमृत और भगवान का मुख दोनों अलग अलग है। जैसा हम लोग कटोरी में कोई चीज पीते हैं तो रस पी करके कटोरी छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा भगवान का मुख नहीं है। उनका मुख और उसमें सौंदर्य दोनों एक ही है। तो कभी तृप्त नहीं हो सकता व्यक्ति, आंखें हमेशा भगवान के मुख पर रहना चाहते हैं। आंखों के लिए भगवान का बदनामुख जो है वो सौंदर्यामृत से भरा हुआ पात्र है, और बाहो लोकपाला नाम, और भगवान की भुजाएं लोकपालों का निवास है। लोकपाल का अर्थ है जीवों का पालन करने वाले इंद्र आदि देवता, ये सब भगवान की भुजाओं के आश्रय में रहते हैं। मतलब समस्त बल के निधान है भगवान की भुजाएं, सारे देवता जीवों का पालन करने वाले भगवान के भुजा के शरण में रहते हैं। और सारंगाणम पदाम्बुजम, सारंग कहते हैं, सारम गायंती इति सारंगा, जो सारम श्री कृष्णम गायंती इति सारंगा, जो सार सब कुछ के सारभूत श्री कृष्ण को ही गाते रहते हैं उनको सारंग कहते हैं। सारंगकार भौरा भी होता है। जो भक्त हैं वे लोग भगवान के पदाम्बुज पर मड़राया करते हैं। लक्ष्मी जी वक्षस्थल पर तो पूरा अधिकार ही कर दी है। और देवराज इंद्र आदि भगवान के बाहों को पकड़े हुए हैं, आश्रय लिए हुए। और जो सौंदर्यामृत पीना चाहते हैं भगवान के मुख पर दृष्टि गिराए रहते हैं। परंतु जो भक्त हैं, सारंग हैं, भगवान के चरण कमल पर, चरण कोमल को ही अपना धन मानते हैं, सारंगाणम पदाम्बुज। इस संसार में जितने भी आज तक विवेकी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, इन सब ने भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय लिया। भगवान का एक एक अंग सब प्रकार की विशेषताओं से युक्त है, बल से, धन से, सौंदर्य। लक्ष्मी जी जो धन की स्वामिनी है भगवान के वक्षस्थल में रह रही है, जो बल के निधान है इंद्रादि देवता भगवान के बाह में रह रहे हैं, और सारा सार विवेकी बुद्धिमान जो लोग हैं भगवान के चरण में रहते हैं, और सौंदर्य रसिक जो है वे अपने आंख को भगवान के मुख में लगाए रखते हैं। इस तरह भगवान सबके लिए परम आकर्षक हैं। अतः यदि द्वारका की स्त्रियां उनका दर्शन करने के लिए ऊंचे ऊंचे महलों पर चढ़ गई तो इसमें क्या अन्याय है, ये स्वाभाविक है। ऐसे मैं तो आज कथा पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोकों की बहुत देर तक व्याख्या होती है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये जल्दी भगवान के चार अंगों का वर्णन किया गया यहाँ पर, और चारों जगह संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग आश्रय लिए हुए। सारंग शब्द से तत्पर्य ज्ञानी भक्त भगवान के चरण में, और जितने बलशाली लोग हैं वो भगवान के भुजा में, और जितने सबसे धनी जो स्त्री है भगवान के छाती में, और सौंदर्य अमृत का जो पान करना चाहते हैं अपने आंखों को भगवान के मुख में लगाए रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए द्वारका की स्त्रियां सारी लज्जा काम धंधा छोड़ करके श्री कृष्ण को देखने के लिए उनसे उनसे धोने को चढ़ गई। अब श्री कृष्ण जो राजपथ पर चल रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहे हैं, इसका लगता है कि सूत गोस्वामी बिल्कुल फोटो उतार रहे हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। सीता तपत्र व्यजने रूपस्कृत प्रसून वर्षैरभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो जथार्को दुपचाप वैदिकहि। द्वारका के राजपथ पर चलते हुए भगवान कितना सुंदर लग रहे हैं। बभौ, बभौ का अर्थ है सुशोभा, श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये प्रश्न होगा कि सूत जी कहां से देख रहे हैं। जहां से श्री कृष्ण साफ साफ दिखाई दे रहे हैं वहां पर मन से खड़े होंगे। कथा कहते समय कथावाचक भी अपनी स्थिति अपनी सीट देखता है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से श्री कृष्ण को देख रहा हूँ। वहां अच्छा कथा कहने वाला व्यक्ति तो केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण का दर्शन करने वाले सबको देखता है। स्त्रियां उधर खड़ी हैं, वसुदेव जी इधर हैं, उग्रसेन जी इधर हैं, या प्रद्युम्न इधर हैं, इधर आगे आगे हाथी चल रहा है, श्री कृष्ण बैठे हैं। और श्री कृष्ण बैठे हैं तो अर्जुन और सात्यकी और उद्धव जी साथ में हैं। सात्यकी और उद्धव चामर दुला रहे हैं कृष्ण पर, गोलाकार चामर है उसको दुला रहे हैं, पंखा झल रहे हैं। और श्री अर्जुन जी छत्र पकड़े हुए हैं, स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रही हैं दोनों ओर से, और भगवान जो माला लगाए हैं इस तरह से दोनों तरफ, दोनों गर्दन के दोनों तरफ माला बहुत सुंदर लग रही है आई हुई है, और पीताम्बर इसको देख करके सूत जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। सीतात पत्र व्यजनय रूपस्कृत, सीतात पत्र श्री कृष्ण के ऊपर उजला छत्र तना हुआ है, श्वेत छत्र। व्यजनय रूपस्कृत है और दोनों तरफ व्यजन दुलाया जा रहा है। श्री कृष्ण के ऊपर छत्र तना है, बगल में उजला दो व्यजन दुलाया जा रहा है, एक को सात्यकी जी दुला रहे, एक को उद्धव जी दुला रहे। प्रसून वर्ष अभिवर्षित पथि, और रास्ते में शब्द का प्रसून बरसाया जा रहा है। प्रसून भी बहुत उज्ज्वल हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ज्यादातर उज्ज्वल हैं प्रसून फूल, प्रसून का अर्थ फूल बरसाए जा रहे हैं। और पिसंग वासा, श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहने हैं सांवले शरीर पर, और वनमालया और वनमाला लगाए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे घनो जथार को दुपचाप वैद्य कई। इसको अभूत उपमा अलंकार कहते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उपमा दी जा रही है, ऐसा कभी होगा न हुआ है। जथा घन अर्क उडुप चाप वैद्य कई, इसे जी कहते हैं भगवान ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे एक सांवला बादल उसके ऊपर सूर्य उगा हो, सांवला मेघ हो और उसके ऊपर सूर्य उगे, अचल रूप से सूर्य उगा हो और दोनों तरफ दो चंद्रमा हो, वो भी चंचल चंद्रमा नाचते हुए कामर को डुलाए जा रहे हैं, दो चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। आर्क उडूप और चाप और बनमाला जो लगाए हैं भगवान सांवले शरीर पर, तो लगता है कि इस घने बादल में दो इंद्र धनुष उगे हुए हैं जिसमें डोरी नहीं है, केवल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। चाप, दो इंद्र धनुष उगे हुए हैं इस घने सांवले बादल पर, और पीताम्बर जो है वो स्थिर विद्युत जैसा है। पीताम्बर है वो अस्थिर विद्युत जैसा। तो मान लीजिए किसी समय किसी सांवले मेघ के ऊपर सूर्य उगा हो और सूर्य भी उगा हो और उसी समय उतने ही प्रकाश से युक्त दो चंद्रमा भी हैं, इसे कभी हुआ है क्या? नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता, इसलिए इसको अभूत उपमा अलंकार कहते। एक सांवले बादल के ऊपर सूर्य उगा है, सूर्य के बगल में घन के दोनों तरफ दो चंद्रमा हैं और तारे भी उगे हुए हैं, जो प्रसून की वर्षा हो रही है वो छिट छिट तारे उगे हुए हैं, तारों में भी काफी प्रकाश है। चंद्रमा के सामने या सूर्य के सामने तारे कभी दिखाई नहीं देते हैं, तारे तो इस समय भी हैं, दिन में भी रहते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ते पर वहां दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य भी उगा है, दो दो चांद उगे हुए हैं और तारे सब हैं, और इसके साथ ही साथ दो इंद्रधनुष दो इंद्रधनुष है और बिजली भी चमकी हुई, ऐसा कि अस्थिर है बिल्कुल। ऐसी कभी बिजली चमकी है कि जो अस्थिर रहे हमेशा सांवले मेघ में? तो अगर ऐसी ऐसा कोई बादल हो जिसके ऊपर सूर्य हो, दोनों तरफ चंद्रमा हो, नक्षत्र सब उगे हुए हों और इंद्रधनुष दो दो हो और इसके साथ बिजली भी चमकी हो लगातार, तो ऐसा होने पर वह मेघ जैसा सुंदर लगेगा वैसा सुंदर श्री कृष्ण लग रहा है। इसी कमाल सिद्ध गोस्वामी का इस तरह से ये समाधि लग जाते, भगवान के सौंदर्य पर चित्त आविष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है न होगा, लेकिन कदाचित ऐसा हो और उस समय वह घन जैसा शोभा देगा, सुंदर लगेगा, वैसे घनश्याम सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। यही है सुध गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी की विशेषता कि भगवान की लीलाओं को बहुत गहराई से बहुत स्पष्ट वर्णन करते हैं। बहुत देर तक भगवान चले राजपथ पर, इस तरह से चलते चलते सबसे पहले भगवान अब भवन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आए हैं तो अपना भगवान का कुछ घर है, वहां रहेंगे, विश्राम करेंगे, सब लोगों को आनंद में भगवान सराबोर कर दिए। सबसे पहले किस भवन में प्रवेश कर रहे हैं? प्रविष्टस्तु गृहं पित्रः परिस्वक्तः स्वमातृभिः बबन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। सबसे पहले भगवान पित्रः गृहं प्रवेश करते हैं, पित्रः का अर्थ है अपने माता पिता के घर में प्रवेश। सारा संसार जिस प्रभु को पूजता है, इतना सत्कार कर रहा है, वो सबसे पहले भगवान अपने माता पिता के घर में प्रवेश। बहुत दिन प्रदेश से आए हैं और बहुत धाम लेकर के भी आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर इनको विदा किए हैं, बहुत धन है इनके पास, बहुत सफलता है। और आप लोगों ने सुना कल कि बहुत लोग भेंट दिए थे, विविध देश में क्षेत्र में घूमते हुए भगवान आए थे। सबसे पहले अपने माता पिता के घर में प्रवेश किए, पित्रो गृहम प्रवेश कर, और प्रवेश करने पर माताओं ने उन्हें आलिंगन में लिया। परिस्वक्त स्वमात्र भी, अपने माताओं द्वारा आलिंगन में लिए गए। यहाँ मातृ भी बहुवचन है, श्री कृष्ण की माँ तो एक थी देवकी, लेकिन मातृ स्व मातृ ही क्यों कह रहे हैं, वो भी स्व मातृ भी अपनी माताओं द्वारा। ऐसा है कि देवकी भी सात बहन थी और सातों का विवाह है वसुदेव जी से हुआ था, और इसके अलावा भी अन्य स्त्रियां थी, सब मिलकर के 18 पत्नियां थी वसुदेव जी की। इन सबको प्रणाम किया भगवान ने, और सबसे पहले तो देखते ही श्री कृष्ण को आलिंगन में ले ली। श्री कृष्ण उनके लिए बिल्कुल पुत्र है, इनके साथ भगवान का संबंध बिल्कुल दूसरा है, स्नेह का वात्सल्य का संबंध है, परिस्वत स्वमात्र। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि जितनी माताएं हैं उतने रूप से भगवान अपनी माताओं के पास गए, और सबको सबसे पहले तो उन लोगों ने कृष्ण को देखते ही भुजाओं में भर लिया, रोने लगी, प्रेम के आंसू बहाने लगी। आगे वर्णन आ रहा है, भगवान को प्रणाम करने का भी समय नहीं मिलता है, देखते ही माताएं भुजाओं में भर ली। लेकिन बाद में बबंदे सिरसा सप्त देव की प्रमुखा मुदा, बाद में भगवान प्रणाम करते आलिंगन कर लेने के बाद भगवान ने अपना धर्म समझा कि माताओं को प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से वो खड़े खड़े पहले आलिंगन में ले ली, आलिंगन से थोड़े देर छूट करके भगवान उनके चरणों में प्रणाम। सिरसा, सिरसा का अर्थ यह है कि साष्टांग लोट करके और अपने सिर को चरण से सटा करके प्रणाम, माँ को इस तरह से प्रणाम किया। पिताजी को तो प्रणाम कर चुके थे, तो रास्ते में मिले थे, वसुदेव जी चले गए थे, लेकिन माताओं को भगवान इस तरह प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, जैसे बेटी को करते हैं सिरसा, या कम से कम सिरसा का यह अर्थ है कि सिर को उनके चरण में सटा कर प्रणाम करना, झुक करके, जिसे नहीं केवल हाथ बढ़ाकर ऐसे छू लिया हो गए। खैर आजकल के लोग यह भी करें तो बहुत सिरसा प्रणाम किए चरण से सताया कर सभी माताओं को, केवल देवकी जी को नहीं, रोहिणी आदि थी, सबको उन्होंने प्रणाम किया, सबको अपनी माँ मानते थे, कोई भेद नहीं करते थे भगवान, सबके आलिंगन में आए। और भगवान आलिंगन में तो बिल्कुल माँ के छाती से सट गए और बिल्कुल उनके बच्चे के रूप में। उस समय भगवान की उम्र कम से कम 90 वर्ष की थी प्रकट लीला में। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया था, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उस समय भगवान लगभग 100 वर्ष के थे, शास्त्र कहता है। लेकिन माताओं के लिए वे पुत्र ही है। ताह पुत्र मंकम आरोप्य स्नेह स्मित पयोधरा हर्ष विहवलितात्मा न शिशुर नेत्र जयी जलही। इतना स्नेह से अभिभूत हो गए थे, इतना स्नेह भगवान के प्रति उमड़ा कि जब पलंग पर वे बैठी, पलंग पर बैठ करके श्री कृष्ण को गोद में ले लिया। इस तरह से पहले तो खड़े खड़े आलिंगन किया था भगवान का, और अब पलंग पर बैठ कर पुत्र को गोद में ले लेना था। स्नेह स्मित पयोधरा, और स्नेह से उनका स्तन चुचवाने लगा, दूध पीने लगा भगवान को पिलाने के लिए। यह अप्राकृत जगत की लीला है, वहां पर माँ जो है सदा माँ रहती है और कृष्ण हमेशा पुत्र रहेंगे। कभी वहां ऐसा नहीं है कि कृष्ण अब नहीं रहे, पुत्र नहीं रहे, नित्य संबंध है भगवान का। यह तो एक झलक दी जा रही है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह भगवान के साथ स्नेह का संबंध होता है। 100 वर्ष के लड़के के लिए अभी माँ के स्तनों में दूध पी रहे हैं, यहाँ यहाँ कोई माँ ऐसी कल्पना कर सकती है? वो थोड़े समय तक दूध रहता है, खासकर के बच्चा जब तक भात रोटी नहीं खाता है तब तक दूध रहते हैं, ये भगवान की व्यवस्था है। और जब वो खाने लगता है, कोई दूसरा दूध पीने लगे या खाने लगे तो दूध सूख जाते हैं। और उसको किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से दूध बनाया नहीं जा सकता है, ये भगवान की व्यवस्था है। वास्तव में बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ के स्तन में दूध धीरे 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 बहने लगता है, और जन्म लेता है तो उसका आहार माँ के देह में ही भगवान स्तन ग्रंथि में भरते हैं, सुख जाता है। ये प्राकृतिक जगत का संबंध है। ये संबंध भी नष्ट हो जाता है, भाव और देह सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन अप्राकृतिक जगत में भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य चलता रहता है। अनादिकाल से वो है और अनंत काल तक चलता रहेगा, इसमें कोई काल बाधा नहीं दे सकता। स्नेह स्मित पयोधरा, पयोधर का अर्थ है स्तन, पय धरती इति पयोधरा, पय का अर्थ दूध, जो दूध को धारण करे उसको पयोधर कहते हैं। पय का अर्थ कभी कभी जल भी होता है, पयोधर का अर्थ कभी मेघ भी होता है, जो जल को धारण करे वो पयोधर। यहाँ पर पयोधर का अर्थ स्तन। स्मित, स्मित का अर्थ चुचुआना, दूध बाहर आना, दूध आने लगा। 100 वर्ष पहले कृष्ण जन्म लिए हैं और 100 वर्ष के बाद भी दूध चुने लगा, यह विचारणीय बात है। यह है अप्राकृत जगत में भगवान के साथ जीव का नित्य संबंध। स्नेह स्मित पयोधरा और हर्ष विह्वलित आत्मान, हर्ष से विह्वल हो रहे थे, विह्वल स्तंभित हो रहे थे और ये सोच रहे थे कृष्ण को ये खिलाना है, ये पिलाना है, ये खिलाना है, क्या खिलाऊं क्या बनाऊं, बच्चा बहुत दिन से आया है परदेश से, पता नहीं इसको कैसा खाने को मिलता होगा नहीं मिलता होगा। माँ यही सोचा करती है, हमेशा माँ यही सोचती है कि बाहर गया है उसको खाने को कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। हर्ष से विह्वलित थी और शिशु नेत्र जैसे जलाई, गोद में कृष्ण को बैठा कर कुछ दिया, नेत्र जैसे जलाई। ऐसा माना जाता है कि यदि माता पिता के या अपने संबंधियों के स्नेह के आंसू यदि बच्चे पर गिरते हैं तो वह निरोग रहता है, वो कोई बनावटी नहीं गिराया जाता है, स्वाभाविक रूप से प्रेम में आंसू गिरे माँ का, शोक का आंसू नहीं, प्रेम का आंसू, आनंद का आंसू, तो उसे बच्चे निरोग रहते हैं, अच्छे होते हैं, सफल होते हैं। यह शिशु का अर्थ लगता था माताएं भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रही, रो रहे थे और कृष्ण उन आंसुओं को अपने शरीर पर ग्रहण करते हुए अपने को धन्य मान रहे थे। यह है अप्राकृत जगत का भगवान के साथ संबंध। बारंबार विचार करने से क्या बात है, 100 वर्ष के बाद भी स्तन में दूध भरा हुआ है, केवल भरा ही नहीं हुआ है, वो चुचुआ रहा है, बाहर आ रहा है, उससे माँ की कंचुकी भींग रही है और श्री कृष्ण भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि वे बच्चे हैं और अभी भी माँ के स्तनों का ही उनको सहारा है, आश्रय है, वो गोद में चिपके हुए। हाँ, तो यहाँ पर संकेत नहीं है, हो सकता है कि ये होंगे, आंसुओं से तो भीग ही गए और गोदी में बैठे ही हैं। स्त्री का जो जीवन है वास्तव में कई फेज से गुजरता है, किसी भी स्त्री को यह कामना जरूर करनी चाहिए कि हमें पुत्र हो। आजकल की स्त्रियां तो केवल प्रेयसी बनाए रहना चाहती हैं, पुत्र नहीं चाहती, मां नहीं बनना चाहती, लेकिन स्त्री जीवन की यह शोभा है, जैसे वह किसी की प्रेयसी है तो किसी की मां बने यह उतनी ही शोभा की बात है। पहले काल में हमारे वैदिक संस्कृति में देखा जाता है कि प्रत्येक लड़की मां बनने की अभिलाषा रखती थी, मैं मां बनूं, और वास्तव में ये सारी सृष्टि तो मां से है, भगवान श्री कृष्ण की माँ है, चैतन्य महाप्रभु की माँ है, भगवान श्री राम की माँ है, सारे वैष्णवों की, श्रेष्ठ लोगों की कोई न कोई माँ है, माँ बनने की इच्छा होनी चाहिए। कितना संबंध है, सब संबंध परफेक्ट है, पुत्र के साथ जो संबंध है वो अपने जगह पर परफेक्ट है, प्रियतम के साथ जो संबंध है पति के साथ वो अपने स्थान पर परफेक्ट। केवल ऐसा नहीं मान लेना चाहिए केवल पति से ही संबंध है और किसी से है ही नहीं। तो इन माताओं का वसुदेव जी से संबंध है, वो पति हैं और श्री कृष्ण पुत्र है। कितना प्रगाढ़ संबंध है, 100 वर्ष के बाद भी स्तन में दूध आना चुचुआना, इस एक वर्णन द्वारा सारे वात्सल्य भावों का वर्णन कर दिया गया। वे बार बार रो रहे थे, अभिषेक कर रहे थे और कृष्ण को खिलाने के लिए तुरंत प्रबंध करने लगे, ये जान करके कृष्ण को यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है, यह प्रिय है। माँ को चिंता लगी रहती है कि बेटा को खिलाना है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं लोग, सुनने में भद्दा है लेकिन माँ के भाव को व्यक्त करने में बड़ा समर्थ है। भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि माई जो है पेट, मेहर जो है टेट। टेट का अर्थ वहां भोजपुरी में होता है पाकिट। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है परदेश से तो अपनी पत्नी उसका टेट देखती है, कितना पैसा लाया है, सब बिल देना है, खर्च करना है, ये करना है, कुछ कमा कर आया कि नहीं। और माँ केवल पेट देखती है कि बेटा खाया है कि नहीं खाया है, कैसे रहा, और देह देखती है कि दुबला हो गया है, पतला हो गया है, वो पैसा नहीं देखती है। यह बात बहुत ही विचारणीय है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से गोपियों ने प्रश्न कर दिया कि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले और नहीं करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं, आप इसमें से कौन हैं? तो भगवान की हार भगवान के मुख से ही स्वीकार कराना चाहते। भगवान ने कहा कि देखो सखियों, जो लोग प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वहां तो प्रेम है नहीं, वो तो केवल झूठा बिजनेस है। हम किसी को कुछ दें और वो हमको दे, हम किसी से प्रेम करें और तब प्रेम करें, तो यहां तो प्रेम नहीं है। मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थई कांतोद्यमाहिते न तत्र सहृदम धर्मम स्वार्थार्थम तद्भिनान्यत। वहां न धर्म है न सौहार्द है, प्रेम करने पर जब प्रेम किया तो क्या। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं करुणा पितरो यथा, जैसे करुणाशील पुरुष अथवा करुणाशील माता और पिता। लड़के माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं लेकिन फिर भी माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, वहां पर निश्चित धर्म है और सत्य है। तो भगवान माता पिता का जो प्रेम है उसको प्रेम स्वीकार किए, लेकिन स्त्री पुरुष का जो प्रेम है उसको उन्होंने उदाहरण में नहीं दिया, साफ बोल रहे हैं जमुना के कुलीन को। आज इस संसार में प्रेम या लव शब्द जो बोला जाता है लगता है बस केवल स्त्री पुरुष में ही है, लेकिन भगवान ने इसको तो इसका नाम लिया ही नहीं, इसको तो उन्होंने कह दिया है तो स्वार्थ है ये, इसमें प्रेम नहीं है। प्रेम वास्तव में माता पिता के हृदय में होता है। और कुछ उन्होंने बताया कि कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले या करने वाले दोनों से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा रामा यात्र कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह ऐसे कहा। कुछ लोग आत्मा में रमण करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमसे कौन घृणा कर रहा है कौन प्रेम कर रहा है, उनकी बाह्य वृत्ति होती ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये जानते हैं कि हमसे यह व्यक्ति प्रेम कर रहा है लेकिन वो आप तो काम होते हैं, किसी के प्रेम की उनको जरूरत ही नहीं है, करो या मत करो। और कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, जड़ होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किसी ने उनका इतना उपकार किया है, ये किया है, अकृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ उपकार मानते नहीं है। और कुछ लोग गुरुद्रोह, और कुछ लोग माता पिता से द्रोह करने वाले होते हैं, कितना भी माता पिता प्रेम करे सेवा करे लेकिन वो उनसे द्वेष करते हैं। गोपियों ने कहा आप किसने हैं? भगवान कहते हैं नाहम तो सख भजतो पिजन तुम भजन निशा मनोवृत लेते, मैं इन चारों में से कोई नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं प्रेमियों के साथ उतना खुल करके व्यवहार नहीं करता हूं, नहीं तो उनका मन बढ़ जाएगा और मेरे कंधे पर चढ़ना चाहेंगे इसीलिए मैं थोड़ा सा दब करके व्यवहार करता हूं, मिल मिल करके छिप जाता हूं। वैसे आप लोगों के प्रेमोद्गार को सुनने के लिए मैं छिपा था कुंज में, सब सुन रहा था कि हमारे विरह में गोपी गीत में आप लोग क्या क्या गा रही हैं, क्या क्या कह रही हैं। लेकिन साथ में जब हो गया था तो कोई कंधे पर चढ़ना चाहता है, कोई मान करके आया, कोई कुछ कर गया। इसीलिए मैं अगर कोई हमसे 100% प्रेम करता है, मैं तो प्रेम तो करता हूं लेकिन 10-20% कम दिखावा करता है जिससे कि हमारे लिए वो तड़पता रहे, बेचैन रहे। भगवान वास्तव में सबसे विलक्षण प्रेमी है, प्रेम का बदला चुकाते हैं। तो इस अवसर पर भगवान ने माता पिता के प्रेम को शुद्ध प्रेम कहा। तो यहां पर वे अपनी माताओं से मिल रहे हैं और मिल करके उन्होंने भोजन किया, स्वागत लिया, खाए पिए और इसके बाद प्रणाम करके कहे कि जा रहे हैं अपने घर में। अथा विशत स्वभवनम सर्व काम मनुत्तमम प्रासाद जत्र पत्नी नाम सहस्राणी च षोडश। अथ स्वभवनम आविशत, इसके बाद भगवान अपने घर में गए। अपने घर तो अपने घर का मतलब है न गृहम गृहमित्यावर गृहिणी गृह उच्चते, गृह को गृह नहीं कहते, गृहिणी को गृह कहते हैं। मतलब अपने पत्नियों के घर में भगवान गए, अब अंततः तो वहीं रहेंगे। अथ आविशत स्वभवनम सर्व कामम, जिन घरों में सब प्रकार की कामनाएं भरी हुई थी अर्थात सब प्रकार की भोगों की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, सब दिव्य जगत की चीजें थी, यहां के किसी कारखाना में बना हुआ नहीं कोई फर्नीचर या कुछ भी, सब कुछ दिव्य जगत की चीज थी। भगवान के घरों में सब कुछ भरा पड़ा, अनुत्तमम जिससे उत्तम और दूसरा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ भवन भगवान का सारे जगत में, जहां पर 16,000 स्त्रियों के दिव्य बड़े बड़े भवन थे। प्रसादा जत्र पत्नी नाम सहस्राणी, षोडश सहस्राणी और च का अर्थ है अष्टोत्तर शत अधिक, 108 अधिक च शब्द से, और षोडश सहस्राणी 16,108 वहां भवन, एक एक नगर जैसा अलग अलग एक एक पत्नी के लिए था, उसमें प्रवेश किए। ये तो पहले ही बात कही जा चुकी है कि विभु परमेश्वर भगवान तो 16,108 भवनों में 16,108 रूप से प्रवेश किए। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सव उत स्थुरारात सहसासनाशयात साकं व्रतैर्व्रीडित लोचनाननः। ये पत्नियां अलग अलग महलों में जब अपने पति को श्री कृष्ण को देखी, कैसे श्री कृष्ण को जो प्रोष्य गृहान उपागतम, प्रोष्य का अर्थ है कि विदेश में रहकर परदेश में रहकर बहुत काल के बाद जो आए थे, उनको देखते ही संजात मनो महोत्सव मन में महान उत्सव सुख हुआ पत्नियों को, वे देख करके उतस्थुरार दूर से ही देखी कृष्ण को और देख करके आसनाशयात उतस्थु आसन से खड़ी हो गई और आशय से भी खड़ी हो गई। आसन से तो देह खड़ा हुआ, बैठी थी बहुत विषाद में भगवान की पत्नियां थी भगवान के विरह में, तो उनको देखते ही तत्काल खड़ी हो गई आसन से और आशय से भी खड़ी हो गई। आशय का अर्थ है अंतःकरण से, मतलब इतनी तत्परता थी कि लगता था कि जैसे आत्मा अंतःकरण छोड़ करके भी भगवान से मिलना चाहता है भगवान से मिलने में अंतःकरण का व्यवधान भी वे सह नहीं सकी। आसन से तो उठी ही, आशय से उठ गई। साकम व्रतैर व्रीडित लोचना ना, आसन को छोड़ दिया और व्रतों को भी छोड़ दिया, अथवा व्रतों के साथ ही वे उठ करके खड़ी हो गई। व्रत का क्या मतलब है? जिस स्त्री का पति परदेश गया हो तो उस स्त्री के लिए शास्त्र कुछ नियम बताता है, उसको यहां व्रत कहा गया है। यदि पति साथ में न हो तो क्या क्या व्रत करने चाहिए? कई काम है जो नहीं करना चाहिए। जागवल्क जी अपनी स्मृति में कहते हैं, क्रीड़ाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम हास्यम प्रगृह जानम त्यजत प्रोषित भर्तृका। प्रोषित भर्तृका, जिस स्त्री का पति परदेश में हो तो उसे चाहिए कि वह क्रीड़ां वर्जित, क्रीड़ा न करे, खेलकूद में भाग न ले, स्पोर्ट्स में भाग न ले, किसी क्रीड़ा में भाग न ले। पति साथ में हो तो पति के साथ भाग ले सकते हैं, लेकिन पति के परदेश होने पर नहीं। शरीर संस्कारम, शरीर का वो बहुत संस्कार ना करे, बहुत अलंकार धारण ना करे, ये शास्त्र वर्णन करते हैं। क्योंकि अगर वो अपने को सजाती है, संस्कार करती है, तो बहुत से दूसरे पुरुषों का मन उस पर आकृष्ट होगा, और उसमें पति नहीं है तो यह ठीक नहीं है। पति के सामने ही उसे श्रृंगार करना चाहिए। और वास्तव में जो पत्नी श्रृंगार करती है तो उसका सिद्धांत यह है कि पति के नेत्रों को सुख देने के लिए, उसको अच्छा लगने के लिए उसे श्रृंगार धारण करना चाहिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। दुनिया देखकर पसंद करके क्या करेगा, ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए शरीर संस्कार मना है। शरीर संस्कार से तात्पर्य यह नहीं है कि स्नान भी न करे, स्नान करे लेकिन बहुत बहुत अलंकार आदि धारण न करे। पति न हो तो न करे, पति के आने पर जितने श्रृंगार धारण करना है करे। ये सिद्धांत है कि पत्नी पति के लिए श्रृंगार धारण करती है, न कि समाज के लिए। समाज के लिए श्रृंगार तो वेश्या धारण करेगी, और पति के लिए श्रृंगार पतिव्रता पत्नी करती है। तो क्रीड़ाम शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम, कोई सोशल फेस्टिवल हो उसमें नहीं भाग लेना चाहिए। समाजोत्सव कहते हैं उसको, तो सामाजिक उत्सव चल रहा है, चल रहा है, उसमें पति के बिना भाग नहीं लेना चाहिए। और हास्यम, हाँ, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए किसी से। और परगृह यानम, दूसरे के घर जाना, ये भी नहीं करना चाहिए। तो ये जितने गिनाए गए तेजित प्रोषित भर्तृका, उसे चाहिए कि वह इनका त्याग करे। पति घर में ना हो तो टीवी भी नहीं देखना चाहिए, पति के साथ बैठकर कुछ देख सकती है, पति ना हो तो नहीं। तो हम लोग तो कई बार घरों में घूमते हैं, देखते हैं पति नहीं है, लेकिन पत्नी ऑन करके टीवी दिन भर देखते हैं। मैंने देखा कनाडा में एक बार, ऐसे ये ठीक नहीं है। दूसरा भागवत ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत है, उसको पढ़े सुने करें, टीवी से भी देखें ठीक नहीं है। तो भगवान की पत्नियां तो पूर्ण पतिव्रता स्त्री हैं, तो व्रतों के साथ ही वे उठकर खड़ी हुई, व्रत छोड़ दिया छोड़, व्रतों के साथ ही वे खड़ी हुई, अपना श्रृंगार नहीं किए थे। भगवान के सामने वे आई तो व्रतों के साथ आए, अथवा आज से व्रत छोड़ करके आई, छोड़ देंगी। अब प्रियतम है तो प्रियतम के साथ वे शरीर का संस्कार करेंगे, सजाएंगे अपने को, चाहे उनके साथ कोई भी फेस्टिवल में, खेलकूद में जो भी भाग लेना है ले सकती हैं, पति के बिना नहीं। नियम, जैसे स्त्रियों के लिए नियम है, वैसे पुरुषों के लिए भी नियम है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सारा अंकुश केवल स्त्रियों पर है और पुरुष बस फ्री हैं जो भी जहां घूमे। भगवान भी इतने दूर से घूम करके आए लेकिन देखे कहीं भी केवल मुस्कुरा कर देखे हैं हस्तिनापुर की स्त्रियों। ऐसा नहीं कि किसी से मिले किसी से कुछ करें, उसे भी बहुत नियम में रहना चाहिए पति को। तमात्मजय दृष्टि भिरंतरात्मना गंभीर भावा परिरे भिरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम्बु नेत्रयोः विलज्जति नाम भृगुवर्ज विप्लवा। तो श्री कृष्ण का वे आलिंगन कर रही हैं, जैसे माताओं के आलिंगन का वर्णन आपने सुना, तो भगवान की पत्नियां भगवान का आलिंगन कर रही हैं। गंभीर भाव, पत्नियों का अभिप्राय बहुत गंभीर है। सूत गोस्वामी कहते हैं हम लोग क्या समझेंगे, तो भगवान की जो प्रेयसियां हैं भगवान के प्रति उनका कितना गंभीर भाव है क्या हम समझेंगे। तो तम आत्मजय ही तमात्मजय बुद्धिवीर दृष्टिवीर अंतरात्मना। श्री कृष्ण का सबसे पहले आलिंगन किया पत्नियों ने अंतरात्मना, अंतरात्मा से बुद्धि से। जब ही वे कृष्ण के आने का संवाद सुनी तो मन ही मन आलिंगन करने लगी थी उनका। जो पत्नी का सहज अधिकार है तो वो मन में आलिंगन करने लगी और कुछ दूर जब आए तो दृष्टि भी, दृष्टि से आलिंगन करने लगी और बिल्कुल निकट जब प्रियतम आए तो आत्मजय पुत्र के द्वारा आलिंगन किया। गोद में पुत्र को लेकर आई और श्री कृष्ण को दी तो वो बच्चा श्री कृष्ण के गोद में झूल गया भगवान का कंठ पकड़ करके। तो वो स्त्री मान रही थी जैसे मैं ही आलिंगन कर रही हूं। बच्चा जो है वो स्त्री और पुरुष को जोड़ने के लिए वास्तव में सीमेंट की तरह है। अगर किसी को पुत्र पुत्री न हो तो वो संबंध है टूटने का डर रहता है। संतान जो है वही पति पत्नी को जोड़कर दीर्घ काल तक रखता है। संतान दोनों के भावों का प्रतिरूप होता है, दोनों के हृदय का अंतःकरण का व्यक्त रूप होता है। तो यहां पर यह भाव है कि आत्मजय ही परिरे भिरे, अपने पुत्रों के द्वारा भगवान का आलिंगन की। मतलब कोई पत्नी यदि अपने बच्चे को गोद में लेकर आती है, बहुत दिन के बाद पति मिलते हैं तो बच्चे को गोद में लेकर के अगर पति को देती है तो यह एक बहुत बड़े सुंदर भाव का आदान प्रदान होता है। यह संतान दोनों को जोड़े रहता है और यदि पति उस बच्चे को गोद में लेता है अपने बच्चे को तो इसे माना जाता है कि वो पत्नी का सत्कार कर रहा है। यह पत्नी बच्चे को खिला रही है तो पति का ही आदर कर रही है। वास्तव में पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है तो पुत्र की सेवा शुश्रूषा करना है तो धर्म है ही। तो पति पत्नी के बीच संतान को बीच में रख करके जो आदान प्रदान होता है आलिंगन होता है तो उससे उनका प्रेम व्यक्त होता है और बहुत काल तक स्थायी रहता है। भगवान द्वारका में गृहस्थ हैं इसलिए जो गृहस्थोचित आचार है उसका पालन किया जा रहा है। पत्नियां इस तरह से भगवान से मिल रहे हैं, आत्मजय ही दृष्टि भी ही अंतरात्मना आलिंगन कर रहे थे। और यह प्रश्न होगा कि ये अंतरात्मा से दृष्टि से और पुत्रों द्वारा आलिंगन कर रही हैं, क्यों नहीं डायरेक्ट हाथ से ही पकड़ करके आलिंगन की। विलज्जति नाम भृगुवर्ज बैकलवात, आगे श्लोक में कह रहे हैं गंभीर भाव लज्जा हो रही है। अपने ही पति हैं तो क्या, लेकिन लज्जा जो है स्त्री का भूषण। अभी आए हैं तो ऐसा नहीं कि उनको अखबार में भर लें। आपने देखा और दूसरे व्यक्ति श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया, माताएं आलिंगन कर ली, लेकिन जिनका सबसे ज्यादा अधिकार है वो डायरेक्ट आलिंगन नहीं थे क्योंकि विलज्जती लज्जा में थे। यही है स्त्री का भूषण। कहीं भी कोई व्यक्ति पूछता है किसी स्त्री से कि पति के विषय में कि तुम्हारे क्या लगते हैं क्या लगेंगे, आजकल की तो स्त्रियां साफ कह देंगी वो मिस्टर हैं हमारे, और वो कह देगा हमारे मिसेज। ये क्लियर कहते रहते हैं, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में डायरेक्ट परिचय देने का नियम नहीं है। परिचय ऐसा देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी है और कोई पूछे कि ये कौन है, तो पति यही कहेगा, अपने पुत्र का नाम रख करके कहेगा उसकी माँ है, अथवा अपने ससुर का नाम रखकर कहेगा उनकी पुत्री है। तो अपने से ज्यादा दूसरों के संबंध को दृढ़ करता है वचन द्वारा, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। अपना संबंध नहीं बताया जाता है, ये कामना रहती है कि पुत्र में और माँ में प्रेम बढ़ना चाहिए, संबंध रहना चाहिए। जैसे रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं, सीता जी हैं लक्ष्मण जी हैं, गांव में भगवान नहीं प्रवेश करते थे, वन के रास्ते में जो गांव रहते थे तो गांव से बाहर भगवान रुकते थे कभी कभी। एक बरगद के नीचे रुके, लोगों ने रोका, कोई पानी ला रहा था पीने के लिए, कोई दे रहा था, भगवान बैठे वहां, पुरुष लोग बैठे थे और सीता जी के पास स्त्रियां बैठी, गांव की स्त्रियां घेर ली, इतनी सुंदर तेजस्वी स्त्री है, तो स्वाभाविक पूछताछ करती हैं किस गांव की है, कहाँ की है, बनारस या यह कि इलाहाबाद की है, कहाँ की है, उधर से आ रहे, जो भी हो, उस समय प्रयागराज नाम था उसका, कहाँ की है। स्त्रियां सब देखकर बात कर रहे हैं कि तुम तो देखने में लगती हो कि राजकुमारी हो, ऐसी हो, वन में क्यों जा रही हो, क्या कुछ सीता जी बोल रही है। अंत में स्त्रियां कहती हैं कि देखो सखी, हम एक बात आपसे पूछना चाहती हैं, ये जो सांवले हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम सीता जी से बिल्कुल सट कर नहीं चलते थे, और बैठे भी थे तो थोड़ा दूर बैठे थे, अगर निकट बैठे होते तो वो समझ गई होती कि इसके पति, जैसे आजकल कोई भी आदमी समझ जाएगा किसी पति है तो इतना आसक्त है कि वो हमेशा सट कर बैठना चाहते हैं, है ना। ये ठीक कार्य नहीं है। तो भगवान राम थोड़ा दूर पर बैठे तो बैठी थी तो कहते हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूं को आही तुम्हारे। ये जो सामने पुरुष हैं जो कोटि कोटि कामदेव को लज्जित कर रहे हैं, हे सखी हे सुंदर मुख वाले, ये तुम्हारे कौन हैं, भगवान के विषय में पूछ रही है, ये तुम्हारे कौन है। कुछ कुछ गांव की स्त्रियों के आशा भास हो रहा था कि ये इसके पति हैं, लेकिन वो पूछ रही है सीता जी से। लेकिन सीता जी गांव की स्त्रियों के वचन को सुन करके थोड़ा थोड़ा आंचल को और ढांक ली। लक्ष्मण जी का परिचय वो पहले बता रही है, भगवान के विषय में उन लोगों ने पूछा था, लेकिन वो कह रही है कि सुभग सहज सुभाय सुभग तन गोरे नाम लखन लघुदेवर मोरे। सीता जी कह रहे हैं कि ये जिनका बहुत सुंदर स्वभाव है और जो बहुत गोरे हैं, अच्छे हैं, ये हमारे छोटे देवर हैं। कितनी सुंदर बात बोल रही है, कह रहे छोटे देवर हैं, मतलब हमारे बड़े देवर भरत जी हैं वो अयोध्या में हैं, ये हमारे छोटे देवर। नाम लखन लघु देवर मोरे, इनका नाम लक्ष्मण है और मेरे छोटे देवर। कितना सुंदर परिचय दे रही है, देवर कह करके वो ये कह रहे हैं कि हमारे पति के भाई हैं। ये कितना भ्रातृत्व की भावना को दृढ़ कर रही है, यह कहना बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं कह दे कि मैं उनकी भाभी हूं, ऐसा नहीं कह दी। देवर कह रही है तो देवर कहने से पति के साथ संबंध झलक रहा है, हमारे पति के छोटे भाई। नाम लखन लघु देवर मोरे, और बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, पियतन चित ही भौं करी बाकी, और जब अपने पति को बताना हुआ तो बहुरी बदन विधु अपने बदन चंद्र को आंचल से ढक करके और केवल आंखों से तिरछा देख दी, बोली नहीं, तो समझ गए कि ये पति है। ऐसा नहीं कहे वो हमारे मिस्टर हैं, सांवले हमारे ये हैं वो, अरे सभी जान जाते हैं कि क्या है। इतना खोल कर कहने की क्या जरूरत। और बोलने में कहे कि हमारे छोटे देवर हैं, तो भरत जी के प्रति भी भाव था कि हमारे बड़े देवर। ऐसा ऐसा नहीं बकने लगेगा, अरे वो हमारी एक सौत माँ है, बहुत खराब है, हमने वनवास दे दिया, ये दे दिया, ऐसा कर दिया। सीता जी सब कुछ नहीं बोली, बस मुंह खुला तो बस खुल गया। बहुत शालीनता है शास्त्रों में और विशेष करके रामचरितमानस में, इतना सुंदर व्यवहार कुशलता दिखाई गई है उसमें। तो इस प्रकार से भगवान की पत्नियां यद्यपि भगवान से मिली हैं कई महीने के बाद, लेकिन फिर भी भगवान का डायरेक्ट आलिंगन नहीं कर रहे थे। उनमें भाव था लेकिन भावों को छिपा रहे थे और लज्जा आ रही थी और चाहती थी कि आंसू जो उमड़ रहे थे आनंद के, उनको चाहते थे कि इनके सामने आंसू न दिखावे। तो कोई भी स्त्री दिखाना नहीं चाहती है कि मैं रो रहे हूं, और अपने भावों को छिपाना चाहती है। तो ये छिपाना चाहे निरुद्धम अपि आश्रवदम्ब नेत्रयो, रोकने के बाद भी उनके आंखों से आंसू ढलक ही गए, आनंद के आंसू। और हे भृगुवर्त, हे भृगुवंश शिरोमणि सौनक जी, ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि वे इस तरह से आंसुओं को रोक रहे थे, आनंद के आंसुओं को, लेकिन फिर भी आंसू बह ही गए। वो विकल थे, विकल थे भगवान की सेवा के लिए, बहुत दिन के बाद मिलन हुआ था। तो इस प्रकार की बात कह करके, तब जब कहते हैं तो मानो सौनक जी कहें कि अरे जब कृष्ण उनके है ही, रोज साथ में रहना ही है, वो भी एकांत में रहना है, तो इतनी क्या उत्कंठा हो रही है। तो उसी का उत्तर देते हैं वे कि जद त्यसौ पार्श्व गतो रहो गत तत्तापि तस्यांग्रि जुगम नवम नवम पदे पदे का बिरमे तत्त पदात् चला पिजीर न जहाति कर ही चेत। यद्यपि असौ, ये कथा कहते समय शुद्ध गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखे हुए हैं, तो कहते हैं असौ। असौ का अर्थ होता है ये, यद्यपि ये श्री कृष्ण इन स्त्रियों के बिल्कुल पास ही रहते हैं, और पास ही नहीं रहोगत, बिल्कुल एकांत में रूम में रहते हैं, फिर भी भगवान का चरण कमल उन्हें नया नया ही लगता है पदे पदे। परंतु प्रतिदिन उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण से हम प्रथम बार मिल रहे हैं, इनको प्रथम बार देख रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। कौन स्त्री है जो श्री कृष्ण से अपने मन को हटा ले और उब जाए? अरे स्वयं चंचल स्वभाव स्त्री भी कभी भी उनके चरण को नहीं छोड़ पाती, क्षीर न जहाती करे। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, लेकिन ऐसी चंचल स्वभाव वाली लक्ष्मी भी भगवान को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ पाती है। भगवान इतने मनोहर हैं, इतने सुखद हैं, कोई भी स्त्री उनको कभी नहीं छोड़ सकती है। अतः यद्यपि द्वारका में अपने पत्नियों के पास ही भगवान रहते हैं, रहोगत एकांत में रहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि हम आज ही प्रियतम से मिल रहे हैं, आज ही इनको देख रही हैं। इतना उत्कृष्ट सौंदर्य है श्री कृष्ण में, इतनी रसिकता है, महानता है। आज तक लक्ष्मी तो चरणों में टिकी है, वक्षस्थल पर टिकी, वो कहां उबी भगवान से। भगवान में इतना रस है कि प्रतिक्षण नया नया लगता है, नया नया लगता है, इसीलिए उनकी उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे सुख से। अब भगवान के की गई लीला को संक्षेप में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं। एवं नृपाणाम क्षितिभार जन्मनाम औक्षौहिणी भी परिवृत तेजसाम विधाय वैरम श्वसनो जथानलम मिथो बधेनो परतो निरायुध। कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद करते हैं और भी लीलाओं के इस प्रकार से एवं निर्पाणम क्षितिभार जन्मना, जो राजा लोग पृथ्वी के भार के रूप में जन्म लिए थे, पाप कर रहे थे, और औक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा जिनका तेज बहुत बढ़ गया था, बल बढ़ गया था, ऐसे राजाओं का वध भगवान ने परस्पर में बैर करा करके कर दिया, सकलनाश कर दिया। जैसे वायु श्वसन, श्वसन का अर्थ वायु, जैसे वायु बांसों को इधर उधर झकझोरता है और उनमें आग लग जाती है और आग बांसों को जला देती है, वैसे ही भगवान ने परस्पर में बैर उत्पन्न करके और उनको आपस में पृथ्वी के भार भूत राजाओं को नष्ट कर दिया। निरायुध, स्वयं हथियार भी नहीं उठाए। कुरुक्षेत्र में भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा। उदाहरण कितना अच्छा है, हवा बांसों के झुरमुट में आग लगाती है तो कोई आयुध लेकर के नहीं, हवा जोर से चलती है, चौराई हवा और बांसों में रगड़ होती है, आग उत्पन्न होती है, बांस जल जाते हैं। वैसे ही परस्पर वैर उत्पन्न हुआ, अंश में भगवान ने परस्पर द्वारा ही सबका कुरुक्षेत्र में नाश कर दिया, पृथ्वी का भार दूर कर दिया। सा नरलोकेस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्री रत्न कुष्ठस्थो भगवान प्रकृतो यथा। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन एक लीला अद्भुत है और आज तक लोग विचार करते रहते हैं कि भगवान इतनी स्त्रियों के साथ क्यों रहते हैं। अरे एक दो के साथ चाहे दस के साथ, भाई 16,000 स्त्री ये बहुत दिमाग को झकझोरने वाली लीला है भगवान की। स ऐसा वही भगवान स्त्री रत्नों के सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रहते थे, रमण करते थे, जैसे ऐसा लगता था कि कोई प्राकृत जथा, कोई प्रकृति के बस में रहने वाला व्यक्ति जो स्त्री से सुख मानता हो, स्त्री का संग्रह करता हो, ऐसा लगता था कि भगवान यहां से स्त्री ला रहे हैं तो उधर से 16,000 ला रहे हैं, उधर से एक ला रहे हैं। ये तो प्राकृत व्यक्ति करता है जिसके मन में काम विकार है, अभाव की अनुभूति है, तो सोचता है स्त्री लाऊं तो कुछ घर का काम करेगी, चाहे सुख मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान इस तरह की लीला किए, सबसे श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए। स ऐसा नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमाया, अपनी योग माया से अवतीर्ण हुए और श्रेष्ठ सुंदरियों के साथ रमण किए, जैसे लगता था कि कोई प्राकृत व्यक्ति, लेकिन प्राकृत नहीं। अगर यहां रेमे शब्द कह दिया गया तो इसको प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में इतना सुख मान रहा है वो भगवान कैसे कह रहे हैं उसको, तो कैसे भगवान कह रहे हैं। तब सूत जी कहते हैं, उद्दाम भाव पिशुमना मल बल गुहास ब्रीड़ावलोक निहतो मदनो पिजासाम समूह्य चाप मजहा प्रमदो तमास्ता जस्येन्द्रियम विमथितुम कुहते न सेतु। वो इतनी सुंदरी स्त्रियां थी, इतनी सुंदर स्त्रियां थी कि उनके आगे कामदेव भी लज्जित हो गया था और अपना धनुष फेंक दिया था। इसका अर्थ है कि काम को जीतने वाली वे स्त्रियां थी, काम विजयिनी थी स्त्रियां, इतनी सुंदर थी। अथवा अमदनह शब्द का अर्थ होगा भगवान शिव, भगवान शिव जो मोहिनी के स्वरूप पर मोहित हो गए थे और कामदेव को जिन्होंने जला दिया था उनको बहुत गर्व था भगवान शिव को, एक प्रकार से कहा जा सकता है कामदेव को हमने जला दिया। लेकिन ये स्त्रियां इतनी सुंदर थी, स्त्रियां इतनी सुंदर थी कि भगवान शिव भी अपना चाप पिनाक फेंक दिए थे, इतनी सुंदर थी। तो अब ये मिलान कीजिए, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया था और वही कामदेव उन स्त्रियों के सौंदर्य को देख करके अपने धनुष फेंक दिया था, मतलब हार मान गया था। पर इतनी सुंदर स्त्रियां, इतनी सुंदर स्त्रियां भी अपने सुंदर हाव भाव से इसको पढ़ने कैसे चल रहे हैं, उद्दाम भाव कृष्ण कृष्णा मल बल गुहा से, जिनके बहुत उद्दाम भाव थे और भाव के सूचक हंसी और लज्जा से युक्त मुख मुस्कुरा करके या देख करके भी हाव भाव से विविध प्रकार से भी भगवान के इंद्रिय को मन को मथने में समर्थ नहीं हो सकते। इतनी स्त्रियां थी, एक सुंदरी ही काफी थी किसी के इंद्रिय को मथने में, मन को विचलित करने में, लेकिन 16,000 स्त्रियां मिल करके भी अनेक हाव भाव से भी भगवान के मन को वश में नहीं कर पाई, मन में विकार नहीं हुआ भगवान के। जस इंद्रियम, इंद्रियम का अर्थ मन, विमथितुम न सेको समर्था न बभुवु, समर्थ नहीं हो सकते। भगवान उनके प्रेम के वश में होकर रहते थे, न कि उनके उनसे वे इंद्रिय सुख के लिए रह रहे थे। कहने का आशय यह, भगवान ने कभी भी उन स्त्रियों के साथ अंग संग नहीं किया, ये शास्त्र कहता है। और शास्त्र में यह लिखा गया, खासकर श्रीमद् भागवतम में, कि शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया मोहिनी को देख करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आज तक वीर्य स्खलन नहीं हुआ। भगवान के देह में वीर्य, हड्डी, चर्म आदि का भेद है ही नहीं, तो पूर्ण आत्मा है, उसमें वीर्य स्खलन का क्या प्रश्न है। इतनी सुंदर स्त्रियां भी उनके मन को आकृष्ट करने में समर्थ नहीं हो सके, ये सब भगवान की लीला थी, यह दया थी कि वे स्त्रियों को स्वीकार किए थे, न कि अपने सुख भोग के लिए या किसी अभाव से, जो गृहस्थ की लीला कर रहे थे, किसी वश में नहीं थे, अभाव में नहीं थे। लेकिन ऐसे तमयम मन्यते लोको ह्य संगम अति संगिनम, लेकिन ये लोग मानते हैं कि ये कृष्ण आसक्त हैं स्त्रियों में, ये असंगी हैं, अनासक्त हैं, लेकिन उनको लोग संगिनम असक्त मानते हैं, क्योंकि आत्मोपम्येन मनुजम व्यातृणवानम जतो बुधा, क्योंकि भगवान कुछ ऐसी लीला करते थे मनुष्य जैसी, तो ये लोग आत्मोपम्येन अपने जैसा है उनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि जतो अबुध है, जानकारी है नहीं, अबुध है, मूर्ख है, क्या करें, भगवान के तत्व का पता नहीं है, इसलिए अपने समान मनुष्य मान लेते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि एतद ईशन मिश्य जब प्रकृत स्थिति तद गुणे ही न युजते सदात्मस्थ जथा बुद्धि सदाश्रय, लेकिन वास्तव में भगवान की यह भगवत्ता है, ईश्वर की यह ईश्वत्व है, कि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए भी उसे बंधते नहीं, बल्कि गुणों को ही कंट्रोल में रखते हैं। तम में निरे अबला मुद्धा स्त्रैणम चानु व्रतम रह अप्रमाण विदो भरतोरीश्वर मत जप, ऐसे परम पुरुष को वे स्त्रियां समझती थी कि हमारे प्रियतम है, हमारे बस में है, हमें पारिजात आदि लेकर देते हैं, तो प्रेम के वश में भगवान को स्त्रैण समझती थी, अपने वश में समझती थी, लेकिन ये मूर्ख मनुष्य समझते हैं कि भगवान वास्तव में स्त्री के गुलाम है, ये है वो है, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा को बुद्धियां अपने अपने अनुसार समझती हैं, वैसे जो व्यक्ति जैसा होता है भगवान को वैसा समझता है, लेकिन भगवान वास्तव में काम को भोग से बिल्कुल परे हैं, दिव्य हैं। तो इस प्रकार भगवान द्वारका में रहने लगे सुख के साथ। अब इसके बाद कहने का आशय है कि युद्ध नहीं किए, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही लास्ट युद्ध था, इसके बाद भगवान किसी का वध नहीं करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करके द्वारका में सुख से रहने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराण पारहंस्याम संहितायाम प्रथम स्कंधे श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेशो नाम एकादश अध्याय, श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किए। तो यहां पर हम लोग कथा का विश्राम दे रहे हैं। भक्तों की ये इच्छा होती है कि भगवान सुख से रहें, लड़ाई झगड़ा में इधर उधर परेशान न हो, इसीलिए उनको द्वारका लाया गया है। आप लोग बहुत प्रेम से और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की इस कथा का श्रवण किए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमने देखा है कि अमेरिका में सब जगह से अधिक चाव यहाँ रहता है। मैं भी कोशिश किया था कि ज्यादा दिन यहाँ कथा कहूँ, लेकिन अब श्री कृष्ण की जो इच्छा होती है वही होता है। ये भगवान सुजोग देंगे तो आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप लोगों का स्वभाव भगवान के प्रति ला